ओम शांति। अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं। लॉग बुक ऑन काउंसलिंग किस किस के पास है? जो आपका फिफ्थ पेपर है उसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट डेजर्टेशन का है। डेजर्टेशन का एक लेक्चर और लगेगा आपका, उसमें आपके टॉपिक्स का सिलेक्शन और ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। जो लॉग बुक है वो बहुत ही सिंपल है। आप ये मत समझें कि काउंसलिंग हमें समझ नहीं आ रही। सबको काउंसलिंग समझ में आ रही है। रोजाना आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं जो भी सेंटर पर आपके आते हैं। काउंसलिंग का मतलब उनको परामर्श देना, और रोज आप परामर्श देते हैं, डॉक्टर से भी ज्यादा परामर्श देते हैं आप। जो वो बुक है उसका हमारा कोई रिटर्न पेपर नहीं है, वो तो केवल आपको समझने के लिए है। अगर आपको काउंसलर बनना है आगे तो वो सारी किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज एग्जाम में कोई थ्योरी का पेपर नहीं है। हाँ, ऐसा कोई पेपर नहीं है। ये जो बुक है, जैसे लास्ट ईयर आपने भरी थी एक्सरसाइज बुक, इसी प्रकार से इस बार वो लॉग बुक है। इसमें 8 केसेस दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी 5 लेने हैं आपको। जैसे रिटायर्डेड पर्सन का है, डिप्राइड वुमेन है, स्ट्रेस का है, टेंशन वाला है, चाइल्ड एजुकेशन है, ऐसे 8 केसेस हैं। उस 8 में से कोई भी 5 केस लेने हैं आपको, और वो अभी डॉक्टर साहब इतना आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लूं। जिनके पास है इसका फोर्थ पेज निकालेंगे, फोर्थ पेज। ये किताब बहुत संभाल के रखनी है आपको, नीट एंड क्लीन इसके ऊपर कवर चढ़ा लेना। ये कहीं नहीं भेजनी प्रोजेक्ट, और ये कहीं नहीं भेजना आपको। जब आपका जुलाई में वाइवा होगा वहां आपको लानी है, और वहां जो एग्जामिनर आएगा वो आपको देखेगा कि कितना साफ सुथरा आपने भरा हुआ है, और उसके आधार पर 50 में से आपको नंबर देगा। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं। यू कैन गेट 50 आउट ऑफ 50। 45 से ऊपर तो सभी के आएंगे, लेकिन 50 तक आपके ले सकते हैं। वह ध्यान रहे इसमें ओवरराइटिंग नहीं करनी, ऊपर कवर आपका लगा हो, साफ सुथरे रहे। ये सारे भरने हैं। जैसे फोर्थ पेज पर घर जाके भरना, उसके बाद शुरू करना। नाम, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका आया नहीं, अभी आ जाएगा, क्योंकि ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया आपका। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब है जब आपका एग्जाम होगा उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा मार्च अप्रैल में। उसके बाद ये कोर्स लिखा हुआ है, ड्यूरेशन लिखा हुआ, 1 ईयर और ईयर 2011-2012। ये भर जाएगा आपका। इसके बाद फिर जो फिफ्थ पेज है इसमें सर्टिफिकेट किस पेज पर दिया हुआ है, या आगे सर्टिफिकेट दिया हुआ है इसमें, वो किस पेज पर का नंबर लिखना है। अबाउट द लॉग बुक ऑन काउंसलिंग, वो किस पेज पर दिया हुआ है इसमें थ्योरी। हाँ, डिटेल ऑफ पोस्टिंग, वो किस पेज पर दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ, उसका नंबरिंग लिखना है। फिर जो 5 केस आपको रिकॉर्ड करने हैं उसमें, वो केस रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5 उसके नंबरिंग करने हैं आपको। वो तो जब आप केस लिखने हैं इसमें, अभी बताऊंगा मैं, वो तभी का ये लास्ट में भरा जाएगा। जब आप पूरी किताब भर लेंगे मई और जून में, तब लास्ट में पेज भरने हैं आपको। और ये असेसमेंट बाय एग्जामिनर ये नहीं भरना। जब एग्जामिनर आपकी लॉग बुक जुलाई में देखेगा, जब आप आएंगे अपने वाइवा में, तब वो असेसमेंट करेगा और फिर उसका वो नंबर डालेगा। तो इसका अभी हमारा कोई मतलब नहीं है, ये जून में आप भरना सारी काउंसलिंग बुक भरने के बाद। अब ये सर्टिफिकेट है तो वहां सर्टिफिकेट का नंबर तो डाल देंगे आप, और यहां आई अपना नाम लिख देंगे, एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, सिग्नेचर कर देंगे अपने, और लेफ्ट में प्लेस जहां से आप आए हैं, और डेट, और डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम ये भी अभी नहीं भरना। जब आपके पास डेट्स आ जाएगी अप्रैल मई में, भी 16 जून को है, 20 जून को है, तब इसको भरेंगे। तो ये सारे लास्ट के भरने वाले काम है, एक्सटर्नल और इंटरनल, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो एग्जामिनर आएंगे वो सारी बुक देखेंगे, वो इस पर आपके साइन करेंगे। इसके बाद ये वही अबाउट द लॉग बुक काउंसलिंग, क्या है लॉग बुक, इसका पेज नंबर वहां आपको भरना है। डिटेल ऑफ पोस्टिंग ये भी वहां 7 नंबर 8 नंबर भर देंगे, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। ये 8 केसेस दिए हुए, काउंसलिंग शुड बी डन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, इसमें से कोई भी 5 चुननी है आपको, जो भी आपको ठीक लगता है उन लोगों के पास जाना है आपको। जैसे लास्ट है ड्रग एब्यूज काउंसलिंग और अल्कोहल, सपोज इस केस को लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कौन सा केस आपने कब लिया है, जो सबसे पहले लेंगे केस रिकॉर्ड 1, इसमें किसी एक व्यक्ति को लेना है। मान लिया कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता है और उसकी आपको काउंसलिंग करनी है, ये सारे आपको हॉस्पिटल से मिल जाएंगे, वैसे भी आपके संपर्क में आने वाले हैं, आपके सेंटर में भी आते होंगे, उनकी सिर्फ काउंसलिंग करनी है, उनका नाम भरना है, एज, मेल और फीमेल, उनके घर का एड्रेस, कैटेगरी ऑफ पर्सन, कैटेगरी मतलब जो कैटेगरी आपने ली है, अल्कोहल वाले की ली है, ड्रग्स वाले की ली है वो लिख देंगे, 8th लिए है, 7th लिए है, 6th लिए है, प्रेजेंट कंप्लेंट्स, उस व्यक्ति कंप्लेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम है उसको, वो बताएगा आपको मुझे ये है ये है ये है ये है, वो जो बोलता जाएगा वो आप लिखते जाएंगे इसमें। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, क्योंकि जैसे आप काउंसलिंग करते हैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो उसकी धीरे धीरे आप पर्सनल हिस्ट्री लेते जाएं, और इसको डायरेक्ट ना भरें, पहले इसको रफ भरें और उसके बाद फेयर इसको करें। इसमें भरेंगे तो कई बार गलती हो जाती है, तो पहले उसको रफ आप कागज पर ले लें, उसकी पर्सनल हिस्ट्री जितना भी लेना चाहे। एक चीज और ध्यान रखें कि जितने कॉलम दिए हुए हैं, जितना स्पेस दिया हुआ है उतने आपको लिखना है, फालतू पेज ओवरराइटिंग करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई शीट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। फैमिली हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे कि मान लिया कोई मैरिड है, कितने बच्चे हैं, वाइफ क्या है, क्या काम करते हैं, वो और कोई हिस्ट्री देना चाहिए अपनी सिस्टर्स की, अपने रिलेटिव्स की, जो भी फैमिली हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार से उसके बाहर रिलेशंस हैं, और ऑब्जर्वेशन मेड, जब आप सारी हिस्ट्री ले लेंगे उसकी, फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी 5-7 लाइन लिख देंगे, जैसे डॉक्टर साहब हिस्ट्री ले रहे थे, और उसके बाद उनकी क्या अपनी ऑब्जर्वेशन है उस पेशेंट के बारे में जो आपसे काउंसलिंग लेने आया है उसके बारे में लिखेंगे। प्रॉब्लम लिस्ट, ये वही है कंप्लेंट और प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जरूरी नहीं है अल्कोहल की हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इससे रिलेटेड, उसके फेफड़े भी खराब हो गए हो, उसमें उसको सिर में दर्द रहता हो, उसे बुखार भी जल्दी जल्दी आ जाता हो, बहुत सारी प्रॉब्लम उसको हो सकती है, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और हैं या रही हैं। काउंसलिंग टेक्निक यूज्ड, ये है आपका, देखिए आप कोई काउंसलर नहीं है, आपको एग्जाम पॉइंट से करना है, इसमें एक दो चीज तो आपको लिखनी है, आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, अभी आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, आपके पास कोई भाई बहन आता है उसको टेंशन है, वो शराब पीता है और वो आपसे सलाह लेता है, तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, सबसे पहले मेन आपका मेडिटेशन यूज करते हैं, उसमें नहीं है आपकी बुक में, लेकिन ये तो लिखना ही है मेडिटेशन टेक्निक यूज्ड, ये तो हर में लिखना है, और उसके बाद एक दो टेक्निक्स आप और लिख सकते हैं इसमें से, क्योंकि बिहेवियरल वाली है वो आप लिख सकते हैं, या कंसंट्रेटेड पर्सन वाली है वो लिखते हैं एक, मतलब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, तो मेन तो हम मेडिटेशन के द्वारा उनको समझाना चाहते हैं, उसके द्वारा उनको चेंज करेंगे, और उसके बाद बिहेवियर वगैरह और उसके थॉट्स वगैरह एज इट इज वो लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने वही टेक्निक लिखी है जो इसमें दी हुई है, आपने उसको किस हिसाब से ठीक किया है, आपकी जरूरी वही टेक्निक हो जो उन्होंने बताई है, आपकी अपनी टेक्निक भी हो सकती है, बिहेवियर थ्योरी भी हो सकती है आपकी, थॉट चेंज मैनेजमेंट भी हो सकता है आपका, मेडिटेशन टेक्निक भी हो सकती है, 2-3 टेक्निक्स में लिख देंगे, लेकिन मेडिटेशन तो हर जगह आएगा, कोई भी मेडिटेशन के बगैर नहीं चेंज हो सकता। उसके बाद ट्रीटमेंट सजेस्टेड, देखिए यहां पर क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, यहां पर एक चीज जरूर लिखनी है आपको, क्योंकि बाहर की काउंसलिंग कर रहे हैं और जब वो ट्रीटमेंट कहेंगे तो तो आप कहेंगे कि आपके शहर में जो नजदीक का ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहां पर आप जाएं, 7 डेज कोर्स करें, और जब आप 7 डेज कोर्स करेंगे, आत्मा और परमात्मा को जानेंगे, तो आपका ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगा, आपके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाएगी, और जो आपके अंदर बीमारी है वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे अपना मेडिटेशन बढ़ाते जाइए, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो इससे ये आपका है। आप उसको दवाई थोड़े लिखेंगे, दवाई आपको पता ही नहीं क्या है, और ज्यादा कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम है, इससे भी ठीक नहीं होता, आपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। और उसके बाद रिजल्ट, मान लिया आप किसी काउंसलिंग करते हैं, दो तीन बार आपके पास आता है और फिर वो आपको रिजल्ट देता है, तो वो रिजल्ट लिखना है कि उसको 60% आराम है आपकी काउंसलिंग से, 80% आराम है, कितना आराम है, वो 2-3 लाइनें आप लिख देंगे। और कंक्लूजन लास्ट में, अपना कंक्लूजन, जैसे कल मैंने बताया था कि कंक्लूजन सजेशन, तो यहां पर आप कंक्लूड करेंगे कि आपने उस केस को शुरू से लास्ट तक देखा है, आप किस कंक्लूजन पहुंचे हैं, और जो टेक्निक आपने बताई है, क्या उस टेक्निक से वो आदमी ठीक हुआ है, कितना ठीक हुआ है, इसमें अपना निर्णय लिख देंगे 5-7 लाइन का। अटैचमेंट इफ एनी, ये पेज भरना जरूरी नहीं है, अगर आप भरें इसका मतलब ये होता है कि आपने इसके साथ और कोई अटैच करना हो, सपोज वो पहले 5-6 डॉक्टर के पास जा चुका, उन्होंने बहुत सारी दवाई रिकमेंड की है, बहुत सारी उसके पास पर्चियां हैं, तो उनको आप इसमें अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ वो आएगा, उसे पता है कि बच्चे को डॉक्टर तो है नहीं, ना ही ना कुछ है, वो नंबर आपके मिलेंगे इसमें अटैचमेंट का, जो उस पेशेंट के अपने अटैचमेंट है, उससे पहले उन्होंने किसी को दिखाया हुआ है, उनकी कोई है फाइल, तो उसके पेज आप इसमें अटैच कर सकते हैं, और नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, नो अटैचमेंट। ये पहला केस हो गया। इसी तरह से दूसरा, हर एक में वही है 15 पॉइंट। दूसरा आपने डिप्राइड वुमेन का लिया है, तो उसमें भी उसका नाम आ जाएगा, उसका एज आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, और वो सारा लिखकर उसको प्रॉब्लम क्या है, उसमें आपने क्या सजेस्ट किया है, कौन सी टेक्निक यूज की है, किस कंक्लूजन पहुंचे, और लास्ट में क्या सजेशन आप देते हैं, तो एज इट इज। ओल्ड एज होम का तीसरा हो सकता है, वो आप ओल्ड एज होम में जाकर उनकी प्रॉब्लम ले सकते हैं, उसमें भी उसी प्रकार से करना है। ये आपका 5वां पेपर है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस पेपर को कोई नहीं करवाएगा तो आप ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत लोगों को काउंसलिंग की है, और इनसे ज्यादा काउंसलिंग की है, जितना आप समझा सकते हैं शायद दूसरे नहीं समझा सकते। इसलिए थ्योरी तो क्योंकि सिलेबस में हमारे, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकली आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा यूज है कि 5 केसेस अभी से सिलेक्ट करना शुरू कर दो, उनकी उनको ढूंढना शुरू कर दो, वो मैं कहता हूं वो शिकार हैं आपके, शिकारी को भी अपने शिकार को तलाश कर देना शुरू करना चाहिए, ताकि आप उनसे पूछते रहें। एक बार पूछे, दो बार पूछे, वैसे तो कहता 5 बार उनकी काउंसलिंग करें तो उसका होगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 1-2 बार उनसे पूछ लें, लेकिन 5 केसेस अभी से आप डिसाइड कर लें कि मुझे किस किस को सिलेक्ट करना है, और अभी से 1 महीने भी आप एक करेंगे तो 5 महीने में 5 केसेस पूरे हो जाएंगे। पहले उसको रफ पर करें और उसके बाद आप फेयर पर उसको कर लें। कोई हो पूरे इंडिया में, टेलीफोन से भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो यहीं का हो जहां आप रहते हैं, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई जानने वाला है और वो आपसे काउंसलिंग लेना चाहता है, तो उसको टेलीफोन पे भी सजेस्ट कर सकते हैं आप तो है? हाँ, हॉस्पिटल में जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ओल्ड एज होम में जाएंगे वहां आपको मिल जाएंगे। नहीं, उनका परमिशन तो क्या, वो आदमी बताएगा तब जब उसकी परमिशन होगी, वो वैसे थोड़ी, वो तो आमने सामने बैठेंगे तो वो देंगे नहीं आपको। काउंसलिंग वाला वो आपके सामने बैठा है, वो तैयार होगा तभी तो आपको आवाज उठाएगा। मान ली बहन बुलाई और ये कहते मैं तो नहीं आती, तो नहीं काउंसलिंग कैसे कर सकते हो? अच्छा, मतलब आप उनका नाम यहाँ देना चाहें तो अच्छा 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 चलो उनका कोई दूसरा एड्रेस लिख दो इसमें, कोई इतना झूठा नहीं, झूठा नहीं डालो, लेकिन उनके कई एड्रेस होते हैं जो प्रेजेंट एड्रेस है वो ना डालो उनका, कोई इधर उधर का, मान ली हम आबू रोड यहाँ रहते हैं और हम पुराना हरियाणा से आए तो वहां का एड्रेस डाल दो उसमें, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होना, इसमें कोई ऐसा नहीं होना वो आपको बुलाएंगे जी वो प्रेजेंट करो ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब आ गए हैं, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।
काउंसलिंग का थियोरेटिकल एस्पेक्ट आप सबने सुन लिया, कुछ थोड़ा बहुत सार तो समझ में आया होगा, और अब काउंसलिंग का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा बहुत माताजी के साथ में बैठ के हमने आपको एक सैंपल दिखाया था, पर इसमें जो केस रिकॉर्ड आपको जो पांच भरने हैं, पांच क्लाइंट ग्राहक के साथ में, ग्राहक नहीं कहेंगे, ये शब्द ग्राहक अच्छा नहीं लगता है, पेशेंट कहेंगे। इस दुनिया में हर एक पेशेंट है, बाबा भी कई बार कहते हैं पूरी दुनिया जो है मेंटल हॉस्पिटल हो गई है ना, उसमें सब आ जाते हैं। तो पेशेंट का केस रिकॉर्ड किस तरह से भरना होता है, आप अगर अपनी लॉग बुक खोलेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। मैं समझता हूं लॉग बुक सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है कि हिंदी में भी है? हिंदी में भी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक केस रिकॉर्ड, पहले मैं आपको उसका सार बताता हूं, फिर प्रैक्टिकल में वापस डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा और कौन सी बात कहां लिखनी है वो आपको समझ में आएगा, ताकि आपका प्रैक्टिकल जो है केस रिकॉर्ड जो है इस लॉग बुक में अच्छी तरह से आप भर सकते हैं। ऐसे पांच पेशेंट के साथ में आपको काउंसलिंग का सेशन देकर के फिर उसको भरना है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे अपनी लॉग बुक खोलेंगे उसमें नाम, उम्र, लिंग, एड्रेस, कैटेगरी ऑफ द पर्सन, उसमें आप प्रोफेशन लिख सकते हैं, क्या प्रोफेशन है व्यक्ति का, क्या व्यवसाय है, उसके बाद में प्रेजेंट कंप्लेंट्स, जैसे माताजी के साथ हम जब बात कर रहे थे तो माताजी की प्रेजेंट कंप्लेंट में ये आएगी कि माताजी को पानी का बहुत डर लगता है, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे एक्सेसिव एंड अनरियलिस्टिक फियर ऑफ बीइंग क्लोज टू प्लेसेस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद में सातवां नंबर पर्सनल हिस्ट्री आएगा, फोबिया है, बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हैं, फोबिया तो एक किस्म की बीमारी है, 600-700 किस्म का मानसिक बीमारी है, फोबिया भी करीब 1500-2000 का होता है, अलग अलग 1500-2000 किस्म का फोबिया होता है, डर होता है। जो कॉमन फोबिया है वो आप सबको पता होगा, अंधेरे का डर, सांप का डर, हाइट का डर, शेर का डर, यहां बैठने का डर नहीं, यहां अगर किसी को खड़ा कर दे, जो जिनको आदत नहीं है, टीचर्स को तो आदत है भाषण देने की, कहीं भी स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग का फियर, एग्जाम का फियर, क्लोज स्पेसेस, बाथरूम, लिफ्ट, नैरो स्पेस, या किसी बड़े से मिलने का डर, या भीड़ भाड़ में अकेले जाने का डर, बाजार में क्राउड में जाने, एगोराफोबिया कहते हैं उसको, सर्जिकल प्रोसीजर या इंजेक्शन का डर, हॉस्पिटल में जाने का डर, फोबिया, ये अलग अलग किस्म के हैं, यात्रा का डर, ट्रैवलिंग का, अकेले ट्रैवलिंग करने का, खैर ये तो फोबिया है, पर वैसी अलग अलग किस्म की बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं, नींद की अलग अलग 50-60 किस्म की बीमारियां होती है, नींद की अलग अलग, किसी को नींद देरी से आती है, किसी को बीच बीच में खुल जाती है, किसी को सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है फिर उसके बाद दोबारा नहीं आती है, किसी को पूरी रात नींद आती है लेकिन गहरी नींद नहीं आती है, हल्की हल्की सपने वाली संकल्प चलते रहेंगे, सुबह उठेंगे तो ऐसे ही लगता है जैसे सोए ही नहीं है, सर्वव्यापी प्रॉब्लम है। हाँ, ये कईयों को बुरे सपन आते हैं, बार बार आते हैं डरावने सपने, एक बार कभी आ जाए तो वो ठीक है, नॉर्मल है, पर बार बार अगर आता है ये बीमारी है। कुछ लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों को नींद में खर्राटे मारने की आदत है, स्नोरिंग, ये बीमारी एक किस्म की, ये सांस की एक किस्म की बीमारी है। कुछ लोग नींद में चलते हैं, कुछ लोगों को नींद में विषाब हो जाती है, कुछ लोगों की नींद में सांस रुक जाती है तो मर जाते हैं, इसीलिए तो नींद में मर जाते हैं। खैर, तो ये बीमारियां बहुत किस्म की है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, टेंशन की एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैं, चिंता की, बहुत ज्यादा चिंता की बीमारी, कईयों को चिंता के अटैक पड़ते हैं, पैनिक अटैक कहते हैं, पैनिक एंग्जायटी अटैक, बैठे बैठे आराम से शांति से बैठे हैं, हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, अचानक घबराहट का अटैक पड़ जाता है, जैसे हार्ट अटैक आ रहा हो, धड़कन बढ़ जाएगा, सांस रुक जाएगा, पसीना छूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बस अब चले गए। होता कुछ नहीं है, हार्ट का चेकअप करा लो, कार्डियोग्राम करा लो, इको कार्डियोग्राफी करा लो, एनजीओ भी करा लो, सब कुछ करा लो, सब कुछ नॉर्मल आता है। ये पैनिक एंग्जायटी डिसऑर्डर है। ऐसे डिप्रेशन की बीमारी है, कईयों को ऑब्सेशन की बीमारी है, एक एक विचार बार बार आता है, गंदगी का विचार बार बार आता है। जैसे कुछ लेडीज होते हैं, टेबल साफ कर लिया, डाइनिंग टेबल अच्छा है, साफ है, फिर भी लगता है अभी भी गंदा है, अभी भी गंदा है, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, फिर भी वापस जाने के बाद भी फावल लगेगा, अभी भी गंदा है, चौथी बार करेंगे। कईयों को ऐसे हाथ बार बार धोते रहेंगे, है ना। खैर, ऐसे बहुत किस्म की बीमारियां होती है, मानसिक बीमारियां होती है। तो आपके पास किस तरह की शिकायत लेकर के, कंप्लेंट लेकर के पेशेंट या व्यक्ति आता है, उसके आधार पे उसकी हिस्ट्री बनती है, उसके आधार पे उसकी कंप्लेंट्स बनती है। तो वो कंप्लेंट्स आप लिखेंगे, फिर उसके बाद में पर्सनल हिस्ट्री आती है। पर्सनल हिस्ट्री में क्या आता है, क्या पढ़ाई किया है आपने, कहां तक पढ़ाई किया है, बचपन आपका कहां गुजरा था, बचपन में आपको किस तरह का धर्म का ज्ञान दिया गया था, किस तरह की आपकी केस, पर्सनल केस हिस्ट्री। मैं वही बात कर रहा हूं, वही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अभी काउंसलिंग में, अभी थ्योरी बात नहीं कर रहा हूं, थ्योरी वो अलग है। अवर्स पेशेंट का, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिस पेशेंट से, तो उसका हिस्ट्री मैं अभी आपसे बात करके आपका सारा हिस्ट्री इसमें भरूंगा प्रैक्टिकल में आपको, इसलिए सबको फिर मालूम भी पड़ जाएगा, ठीक है। फिर ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते हैं, नास्तिक है या आस्तिक है, इनकी पर्सनालिटी क्या है, है ना, क्या धंधा करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या बराबर कमाते हैं, फैमिली को चलाने जितना चला कमाते हैं या कम कमाते हैं, उसका टेंशन है। मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे कितने हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चों की तरफ से कोई चिंता हो, कोई और चिंता हो, चिंता वाली कोई विशेष बात हो, वो खास पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल बात है। आप पूछेंगे, आपको कोई चिंता की बात है विशेष, क्या आपको पैसे की कोई दिक्कत है, क्या आपके घर में कोई चिंता वाली बात हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बीमार हो गया है पिछले दो महीने में, चार महीने में, इसके कारण से आपको यह तकलीफ हो गई है, या आपको कोई धंधे में नुकसान हो गया है, या आपकी कोई नौकरी छूट गई है, या आपको किसी फ्रेंड के साथ में कुछ हो गया है, कोई हादसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, वगैरह वगैरह, कोई चिंता वाली विशेष बात पिछले एक दो साल में, रिसेंट में या रिसेंट पास्ट में हुई है, वो पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, खुद तो नहीं बताएगा, हो सकता है बता भी दे कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, मेरी ये स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव है, मेरी ये वीकनेस है, पर अगर साथ में कोई रिश्तेदार है तो वो जरूर बताएगा। मान लो उसका बड़ा भाई है या मम्मी आई है या पापा आएगा तो बताएगा, हाँ इसका स्वभाव है ना, ये थोड़ा चिड़चिड़ बहुत करता है, ये सबकी नुक्स बहुत निकालता है, ये इसका स्वभाव है, शुरू से ऐसा है, बचपन से, बचपन में भी बहुत झगड़े करता था, छोटा था ना तो भी शैतानी था ये, मतलब इस तरह का डिस्क्रिप्शन देंगे उसकी पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी एक दो दिन की नहीं होती है, एक दो साल की नहीं होती है, वो बचपन से लेकर के अभी तक का जो स्वभाव है वो है। अलग अलग किस्म की पर्सनैलिटी होती है, मालूम है, एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। हम डॉक्टर्स जो हैं, मनोचिकित्सक, एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डायग्नोस करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। नॉर्मल पर्सनैलिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमें नहीं सिखाई जाती है। जैसे डॉक्टर को यह सिखाया नहीं जाता कि फिजिकली कंप्लीटली हेल्दी कौन है, ऐसा नहीं सिखाया जाता है, उसे बीमारी किस तरह से डायग्नोस करनी है वो सिखाया जाता है। इस तरह से हमें भी एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, 10-11 किस्म की अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जैसे कि एग्जाम्पल, कुछ लोग बहुत अहम वाले होते हैं, वो हमेशा अहम में रहते हैं, अहम इगोइस्टिक, उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। उसके साथ में एडजस्ट करने में अक्सर करके मेजोरिटी लोगों को प्रॉब्लम आता है, वो किसी को एडजस्ट नहीं होंगी या होगा, पर उसके साथ में आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ऐसे आपको फैमिली में भी मिलेंगे, सेंटर में भी मिलेंगे। ऐसे एक किस्म की है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हर किस्म में सनकी होते हैं, वहमशक होता है। कोई सेंटर पे कोई आया होगा, ओम शांति करे, कैसे हैं, ओम शांति, अच्छा, वो ओम शांति करके चला गया, उसको विचार चलता है ये मेरे को क्यों ओम शांति किया, हाँ इसके पीछे कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है, अरे ओम शांति करता है ओम शांति करेगा, मतलब सन की दिमाग, ये कुछ अगड़म बगड़म तो नहीं कर रहा है मेरे पीछे, तो इसको कहते हैं पैरन, कुछ नुकसान तो नहीं करेगा। ऐसे स्वभाव, अलग अलग किस्म की पर्सनैलिटी होती है, तो वो पर्सनल हिस्ट्री में आती है। इसलिए स्वभाव के बारे में पूछना, या पेशेंट से या पेशेंट के साथ में कोई फैमिली मेंबर आया उसे पूछना, ये पर्सनल हिस्ट्री में आता है। पर्सनल हिस्ट्री में आप तो डॉक्टर है नहीं, पर हम डॉक्टर लोग और भी चीज पूछते हैं, बहुत पर्सनल चीज, व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ के बारे में, जिसको हम कहते हैं जातीय इंफॉर्मेशन, साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री। बहनों में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं या और कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उसमें लिखते हैं। फिर नौवां सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री आपका एक अलग दिया है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, वास्तव में पर्सनल हिस्ट्री में होना चाहिए, पर आपको एक अलग से यहां टॉपिक दिया है। सोशल हिस्ट्री में फिर फैमिली की हिस्ट्री और फाइनेंशियल हिस्ट्री आती है। फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग कमाते हैं, कितने नहीं कमाते हैं, बेटा दूर रहता है, नजदीक रहता है, घर में रहता है, नहीं रहता है, कोई पढ़ने जाता है, वगैरह वगैरह। और घर में जो लोग रहते हैं, क्या आपस में बराबर बनती है, नहीं बनती है, पेशेंट खुद बताएगा अगर किसी से बनती नहीं होगी। मेरा भाई है ना छोटा, बहुत शैतानी है, मुझे बहुत तंग करता है, ऐसे बताएंगे। ये अगर दूर हो जाए ना तो मेरा सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको सोशल हिस्ट्री में, फैमिलियल हिस्ट्री में मिल सकती है। इकोनॉमिक हिस्ट्री में किस तरह की कमाई करते हैं, सफिशियंट कमाते हैं, कम कमाते हैं, क्या इसके कारण भी टेंशन है। पैसे की चिंता तो कलयुग में सबको होती है, जरूरत से ज्यादा है तो भी टेंशन होता है, जरूरत से कम हो तो भी टेंशन होता है ना, तो ये इसमें लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस मेड, फिर आप ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया, आप पेशेंट से बात कर रहे हैं, व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपने क्या विशेष बात उसमें देखी, बात करते करते क्या बहुत डिप्रेस्ड हो गया, चुप हो गया, रोने लग गया, तो लिखेंगे हां ये बीच बीच में रोता था, बात करते करते चिढ़ गया बिना कारण के, तो लिखेंगे हां चिढ़ रहा है ना, क्या और कोई बात आपने देखी, तो वो विशेष ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। क्या उसकी बिहेवियर कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका ड्रेस कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ झूठ बोल रहा है, तो वो भी लिखेंगे हां लगता है ये झूठ बोल रहा है, या आपको ये लगता है कि उसको याद नहीं रहता है, आप उसको पूछेंगे आप कहां तक पढ़ाई किया है, किया तो है पर याद नहीं आ रहा है, मतलब वो चीज फिर आप लिखेंगे हां ये कुछ याद करने की कोशिश करता है कहां तक, इसका मतलब मेमोरी का इसका गड़बड़ है, मेमोरी प्रॉब्लम है ना। तो आपने जो ऑब्जर्वेशन किया वो इसमें लिखेंगे, और ऑब्जर्वेशन जो है वो खास मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित लिखेंगे, क्योंकि तनाव जो है, डिप्रेशन है, वो सब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, मेंटल हेल्थ से संबंधित है। तो आप लिखेंगे, आप उसे पूछेंगे आपका मूड कैसा रहता है सारा दिन, खुश या उदास या चिंता में। अब जैसे मैं माताजी से पूछूं तो माताजी कहेंगे हां मैं तो बहुत खुश रहती हूं, बस पानी के पास जाती हूं मैं, बस डर लगता है ना माताजी, तो आप लिखेंगे हां माताजी वैसे तो खुश रहती है पर पानी के पास जाने में डर लगता है, तो ये आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। मेमोरी का गड़बड़ उसमें लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का गड़बड़ उसमें लिखेंगे, बात करते करते आप कुछ बात कर रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन कहीं और ही जा रहा है, एकाग्रता नहीं है बातचीत में, तो वो लिखेंगे हां एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन में गड़बड़ है इसका, मैं बात कर रहा हूं वो कहीं तीसरी चौथी बात सोच रही है, सोच रहा है या बोल रहा है ना। हम बात करते हैं पानी की और वो बात करता है पहाड़ की, मान लो, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है व्यक्ति का, तो वो ऑब्जर्वेशन में लिखा जाएगा। फिर और तरह तरह के डर, वहम, शक, ऑब्सेशन, विचार वायु, अगर कोई और बात विशेष बताता है पेशेंट व्यक्ति, तो वो लिखेंगे आप इसमें, कोई चिंता है, कोई डर है, कोई भ्रांतियां हैं अलग अलग किस्म की, गलत गलत किस्म की, लगता है मेरे पेट में कैंसर हो गया, ऐसे लगता है कभी कभी, कुछ ऐसे बोलते हैं है ना, मुझे लगता है कैंसर हो गया है, मुझे एड्स हो गया है, ऐसी ऐसी बातें, तो वो सारी बातें लिखेंगे, इसको ऐसा डर है, ऐसे विचार आते हैं। तो जो भी पर्सनल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं उसके व्यवहार से लेकर, इसकी वाणी से लेकर, कई बार वाणी से भी मालूम पड़ता है कि उसको कितना टेंशन है। व्यक्ति बहुत जल्दी बोलता है, फास्ट बोलता है, अरे बस मुझे तो बहुत डर, आप जल्दी निपटा दो, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। तो वो भी लिखेंगे, हाँ इसकी वाणी से ऐसे मालूम पड़ता है फटफट बोल रहा है, इसको टेंशन लग रहा है। तो वो लिखेंगे, इसकी वाणी में टेंशन तनाव जैसा लग रहा है, इसकी भावनाएं, इसकी याददाश्त, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी इंटेलिजेंस, बुद्धिशाली कितना है। गंगा के किनारे रहता है मान लो, है ना, और हम पूछेंगे कानपुर में, कानपुर के पास में कौन सी नदी आई, तो कहेगा हाँ कोई नदी तो है पर नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उसकी बुद्धि मतलब इतनी नहीं है, या हो सकता है मंद बुद्धि का हो, मेंटली रिटार्डेड हो, स्कूल में गया होगा, दो चार क्लास पढ़ा होगा पर बुद्धि इतनी नहीं होगी। तो वो लिखेंगे हाँ इसकी आईक्यू कम लग रही है, बुद्धि कम लग रही है। तो बुद्धि भी जो है वो ऑब्जर्वेशन में आएगी, आईक्यू, ठीक है। फिर इसकी डिसीजन पावर, जजमेंट पावर कैसा है, वो अपनी प्रॉब्लम के प्रति कितना अवेयर है, वो भी लिखेंगे। बहुत गंभीर जो बीमारियां होती है, मानसिक बीमारियां, पागलपन जैसी, जैसे आपने देखे होंगे बाजार में, स्टेशन पे, इधर उधर कुछ लोग बहुत पागल घूमते हैं, कपड़े फटे हैं, दाढ़ी लंबी है, गंदा खाते हैं, वहीं सो जाते हैं, वहीं उठते हैं, ये बहुत गंभीर किस्म की मानसिक बीमारी। ये भी बिल्कुल ठीक हो सकती है दवाइयों से, पर ऐसे व्यक्तियों को, गंभीर बीमारी वाले मरीज को, खुद को एहसास नहीं है कि मुझे बीमारी है। तो वो गंभीर बीमारी में व्यक्ति को अपने बारे में इंसाइट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। आपके पास तो ऐसे ही मरीज आएंगे जिनको वास्तव में प्रॉब्लम होगी और उनको मालूम है कि प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, मुझे बहुत उदासीनता लगती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो जीने को दिल नहीं करता, मुझे तो मर जाने को दिल करता है, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे बोलेंगे डिप्रेशन वाले। तो वो सब इसमें लिखेंगे आप, और कितनी अवेयरनेस है अपनी प्रॉब्लम के प्रति, वो भी लिखेंगे। फिर प्रॉब्लम की लिस्ट उसके नीचे ही है, ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में फिर आप ये लिखेंगे कि डिप्रेशन लग रहा है, प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे। आप मनोचिकित्सक नहीं है कि आप डायग्नोस करेंगे, हाँ यही फाइनल डायग्नोस है, इसके अलावा और कोई डायग्नोस, ऐसा नहीं फाइनल डायग्नोस करेंगे। आप प्रॉब्लम लिखेंगे कि व्यक्ति को नींद की शिकायत है, इंसोम्निया है, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, टेंशन है, फोबिया है, डर है, ये प्रॉब्लम की लिस्ट में लिखेंगे, ठीक है। हेडेक है, जब भी टेंशन होता है, चिंता होती है, सिरदर्द हो जाता है, टेंशन के कारण हेडेक है, घबराहट है, ये प्रॉब्लम की लिस्ट है। हाँ जी, ना ना, प्रॉब्लम की लिस्ट अच्छी है, सब में पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, देखो 11 नंबर का। फिर 12वां है, काउंसलिंग टेक्निक्स आपने कौन सी यूज करी। मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया, स्टूडेंट आया आपके पास, 20 साल की उम्र का है स्टूडेंट, कॉलेज में पढ़ता है, सेंटर पे आया, वो ये कहता है मुझे योग वोग नहीं सीखना है, सिर्फ मुझे डिप्रेशन को दूर करो। आप कहते हो ना योग से सारी शक्तियां मिलती है, सर्व शक्तियां मिलती है, आप मेरा सिर्फ डिप्रेशन दूर करो, मेरे से बात करो और ठीक करो उस डिप्रेशन। उसको ना सुख चाहिए, ना शांति चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना कुछ नहीं, वो आपसे आके बैठता है, आप बात करना शुरू करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं, कैसे आपको डिप्रेशन हुआ, वो कहेगा मेरे एक फास्ट फ्रेंड है, उसने 3 दिन पहले मेरे से फ्रेंडशिप छोड़ दी, उसने फ्रेंडशिप ब्रेक कर दी, हम सुबह शाम दोनों घूमने जाते थे, खाते थे, पीते थे, मौज करते थे, बस उसके बाद मुझे डिप्रेशन हो गया। फिर उसे आप बात करना शुरू करेंगे, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, फास्ट फ्रेंड्स हैं, वो कहेगा 1, 2, 3, 8 एक तो है, तो बस एक ने छोड़ दी ना, तो 7 तो दूसरे है ना, हां 7 तो है, तो बस उसके साथ टाइम पास करो, सिंपल। ये कॉग्निटिव थेरेपी है, उसकी विचारधारा को, राइट फॉल्टी थिंकिंग को राइट थिंकिंग में बदली किया। ऐसे थोड़ी कि किसी का एक ही फ्रेंड होगा, 7-8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आजकल के जमाने में कुछ वो नहीं है, कलयुग में कहीं कुछ भी, और फ्रेंडशिप की डेफिनेशन बदली हो गई है ना, तो उसमें आप नहीं जाना है, आपको उसका डिप्रेशन ठीक करना है, वो कितने फ्रेंड्स है, नहीं है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो फिर काउंसलिंग किट कौन सी टेक्निक यूज की इसमें, कॉग्निटिव थेरेपी आपने इस्तेमाल की, उसकी फॉल्टी थिंकिंग को राइट थिंकिंग में बदली किया, यह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और कौन सी काउंसलिंग की टेक्निक यूज करी, मान लो अभी माता जी है, माताजी का आप एक सेशन में तो फोबिया दूर नहीं करेंगे, है ना। माताजी को दो तीन सेशन देना पड़ेगा, हो सकता है दो तीन बार बैठना पड़े। काउंसलिंग का सेशन जो है 30-30 मिनट 40-40 मिनट का आप बैठ के दूर करेंगे। ये एक सैंपल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, फिर ट्रीटमेंट सजेस्टेड लिखेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा डर है, बाहर पानी गिरा है थोड़ा सा रास्ते पे और वहीं उसके पास भी जाने में मान लो माताजी को डर लग रहा है, अगर इतना डर है उसे रास्ता बदली कर देते हैं मान लो, तो फिर आपका काम नहीं है, हमारे जैसे मनोचिकित्सक का काम है फिर इनके पास भेजना, वो आपका काम है। तो ट्रीटमेंट में लिखेंगे कि रेफर कर दिया साइकियाट्रिस्ट को। या अगर किसी को सुसाइड की टेंडेंसी है, डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको आत्महत्या करने का दिल करता है, जल जाऊं मर जाऊं ट्रेन के नीचे कट जाऊं, कल तो रात को मैं गया भी था पर हिम्मत नहीं हुई कटने की, ऐसे ऐसे बताएंगे आपको, आप पूछेंगे तो सुसाइडल ऐसे टेंडेंसी वाले पेशेंट को आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप भेज देंगे साइकियाट्रिस्ट के पास, उनका काम है। जो मरने की और मारने की बात करते हैं उनको बड़ी बीमारी है, उनको आप काउंसलिंग देने से दूर रहेंगे। आप राय देंगे, उसके रिश्तेदारों को भी साथ में राय देंगे, ट्रीटमेंट में ये भी लिखेंगे हमने रिश्तेदारों को भी बताया है, रिश्तेदारों को यह राय दिया है कि इनको ले जाओ। काउंसलिंग तो बाद में ठीक होगा, जब उसको सुसाइड की आत्महत्या करने की भावनाएं उसकी खत्म हो जाएगी थोड़ी, उसके बाद में काउंसलिंग शुरू होगा, उसके बाद में हो सकता है मेडिटेशन काम करे, तब तक काम नहीं करता है, समझा। फिर रिजल्ट लिखेंगे एक सेशन के बाद में कितना फर्क पड़ा। आपके पास तो एक ही एग्जाम्पल है, एक पेशेंट का एक प्रोफोमा है, फिर दूसरे पेशेंट का, ऐसे पांच आपको रखने हैं। हो सकता है आप एक ही पेशेंट को दो या तीन बार काउंसलिंग के सेशन दो। अच्छा बहन जी बताओ प्रॉब्लम क्या था उस माताजी को, मतलब ट्रेन के नीचे आ भी गई थी। हाँ। अच्छा देखो ये अभी ये प्रैक्टिकल की बात है, आप सुन रहे हो ना, ऐसे गंभीर मानसिक बीमारी वाले भी पेशेंट आपके पास आ सकते हैं, ऐसे मरीज को आपको हाथ में नहीं लेना है। आपको फोन अगर वो करती भी है माताजी बार बार, तो आप उनके रिश्तेदार से बात करो, उनके बेटे से बात करो, उनके हस्बैंड से बात करो और उनको बोलो मेरे से बात कराओ और उनको राय दो कि अर्जेंट अभी के अभी आप मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास ले जाओ और उसको वहां हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, हमारा काम नहीं है। नहीं तो क्या आप उसका हाथ आप उसका केस हाथ में लेंगे क्या, आप उसको सेंटर में भर्ती करेंगे, सेंटर में आके पंखे पे लटक गई तो ना, आपका काम नहीं है। मानसिक बीमारी जो है, मानसिक स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट अलग है, आपका डिपार्टमेंट सिर्फ आध्यात्मिक स्वास्थ्य का है। आप ये काउंसलिंग जो सीख रहे हैं वो एडिशनल है आपके लिए, आप मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए काउंसलिंग परामर्श जो सीख रहे हैं वो आपकी एडिशनल दक्षता है, स्किल है। आप साइकियाट्रिस्ट का रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको कल जाकर के पुलिस के फंदे में आना पड़ेगा, लफड़े में आना पड़ेगा और आपको कोर्ट में ले जाएंगे कि आपने बुलाया था सेंटर पे माताजी को, माताजी ने ये किया है, आप रिस्पॉन्सिबल इसके लिए जवाब दो। आप ऐसे केसेस को गंभीर बीमारी वाले पेशेंट को नहीं रखेंगे, आप उनको रेफर कर देंगे। आप उसके बेटे को या घर में कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति है उसके साथ बात करके उसको तुरंत बोलेंगे आप इसको ले जाओ, या उसको सेंटर पे बुलाओ और समझाओ कि हमारा काम नहीं है, ये गंभीर मानसिक बीमारी है, ठीक है। फिर आप रिजल्ट लिखेंगे, 14वां है रिजल्ट। अगर आप देखेंगे केस प्रोफोमा में रिजल्ट, रिजल्ट क्या आया, पेशेंट अच्छा हुआ वैसा का वैसा रहा या बिगड़ गया, जो भी है रिजल्ट। अगर आपने दो तीन काउंसलिंग के सेशन दिए हैं, कम मानसिक बीमारी है, ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो पेशेंट अच्छा हो जाएगा आपके काउंसलिंग से परामर्श से। अगर गंभीर बीमारी वाला है पेशेंट, ठीक नहीं भी हो सकता है, तो आप लिखेंगे रिजल्ट में कि हमने रेफर कर दिया, ठीक है। एक खास बात जो आपको सीखने लायक है, क्योंकि बाबा ने बोला है बीमारियां बढ़ेगी, बाबा ने वरदान दिया है बीमारियां बढ़ेगी। हाँ बाबा ने मेडिकल विंग के मीटिंग में भी बताया था 2 साल पहले कि तन मन की बीमारियां खास बढ़ेगी बढ़ेगी, विनाश आएगा, पांचों तत्वों की तरफ से आपदाएं आएंगी, बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, भूकंप होंगे, उथल पुथल होगी। कुछ बीमारियां डिजास्टर के बाद में होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के बाद में बड़ी बीमारी होती है। मान लो भूकंप आ गया तो करीब करीब 30% लोगों को बहुत गंभीर टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, वो सो नहीं सकते हैं, उनको बार बार भूकंप के दृश्य दिखाई देते हैं, बार बार उनको नींद में भी सपने में भी वही आता है, कोई टूट रहा है, कोई हिल रहा है, मकान हिल रहा है, वो जाग जाएंगे। अक्सर करके ऐसे होता है और वो बहुत महीनों तक चलता है। इसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD उसको इंग्लिश में कहते हैं। यह भी एक किस्म की गंभीर मानसिक बीमारी है। अगर इसका सही तरह से मनोचिकित्सक के पास इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, पागलपन की बीमारी भी हो सकती है उसको। इसलिए ऐसी बीमारी वाले मरीज को, या ऐसे मरीज आपके पास बहुत आएंगे, जब भी डिजास्टर होगा, प्राकृतिक आपदाएं होगी या मानव सर्जित आपदाएं होगी, आतंकवादी अटैक होंगे, कुछ भी होगा, सिविल वॉर होनी है, अच्छी खासी खून की नदियां बहनी है भारत में, उसके बाद में दूध घी की नदियां बहेगी, है ना। तो आपको तैयार इसलिए होना है काउंसिलर बनने के लिए, लेकिन आपका रोल जो है सीमित है। छोटी मोटी प्रॉब्लम को आप परामर्श के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, सकाश के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा गंभीर बीमारी जो है फिर आप उसको रेफर कर देंगे नजदीक के किसी मनोचिकित्सक के पास, या कोई मनोचिकित्सा का हॉस्पिटल है वहां रेफर करेंगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि आपका पेशेंट कैसा था, आपका डायग्नोसिस कैसा था, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसी रही, पेशेंट कोऑपरेटिव था नहीं था, और आप काउंसलिंग में कितने सफल रहे या कितने असफल रहे। आपको भी संतुष्टता मिले, पेशेंट को भी संतुष्टता मिले, तो समझो आपका काउंसलिंग अच्छा हुआ है। अगर पेशेंट संतुष्ट नहीं हुआ है, आप भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो कंक्लूजन में लिखेंगे कि काउंसलिंग का परामर्श जो है वो इतना सफल नहीं रहा जितना होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टली लिखेंगे, जो कुछ है लिखेंगे। फिर अटैचमेंट में, इफ एनी लिखा है, अटैचमेंट में क्या क्या है, अटैचमेंट में कोई खास और विशेष बात है। कई बार कुछ लोग लिख के लाते हैं प्रॉब्लम्स, सेंटर पे कुछ जिज्ञासु आते हैं तो अटैचमेंट यहां लगा दो इसके साथ में कि ये पेशेंट ये लिख के लेके आया है। तनाव होता है, घर में बहुत झगड़े होते हैं, गुस्सा होता है, आजकल नींद नहीं आती है, वगैरह वगैरह लिख के ले। कई कुछ लोगों को मेमोरी का प्रॉब्लम होता है तो पहले से लिस्ट लेके लिख के आते हैं, है ना, तो वो सारा अटैचमेंट यहां लिखेंगे। या मान लो कोई और जगह काउंसलिंग करा के आया है, कोई और टेस्ट करा के आया है, IQ टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सारा अटैचमेंट में यहां लिखेंगे या अटैचमेंट यहां डालेंगे। या मस्तिष्क का कोई टेस्ट करा के आया है, EEG का, CT स्कैन का वगैरह वगैरह ऐसे। खैर, ये तो आपको मोटे मोटे रूप में मैंने बताया। अभी मैं प्रैक्टिकल में एक काउंसलिंग का सेशन आप में से किसी के साथ में बैठ के करता हूं, कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड, बिना मैं रुकूंगा नहीं। मैं किस तरह से बात करता हूं, किस तरह से हिस्ट्री लेता हूं, किस तरह से काउंसलिंग साथ साथ देता हूं और किस तरह से पूरा करता हूं, आप देखेंगे 15-20 मिनट में मैं करूंगा। आप में से कोई भी वॉलंटियर करना चाहे तो मेरे पास बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर माताजी तो है ही है। हां जी, कोई आना चाहेंगे? आइए आइए। क्योंकि हमारी तो आदत बनी हुई है, ये सारी चीज करने की, रोज करने की आदत है, इसलिए हमें, मैं सिर्फ बात करता जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं जो आपको लॉग बुक में भरनी है। मैं सिर्फ बात करता जाऊंगा, कंटिन्यूअस बात करता जाऊंगा। फिर लास्ट में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, कौन सी बात कहां कहां फिट होती है, आपने कहां कहां लिखी है। आप अलग से रफ पेपर पे ये लिखेंगे, आप लॉग बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, कंफर्टेबल है? हाँ हाँ जी, ओम शांति। चलेगा, चेयर पे बैठना है? ओके, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, हिंदी में? हिंदी में। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंपा बहन। अच्छा, सुनाई दे रहा है सबको? ध्यान से सुन रहे हैं, अभी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करना, ठीक है? हाँ जी, कहाँ से हैं वैसे?
राउरकेला, ओडिशा।
ओडिशा से, अच्छा। पूरा नाम? चंपा बहन,
चंपक लता पंडा।
अच्छा, पंडा
जी।
क्या उम्र है आपकी?
42।
अच्छा, क्या करते हैं वैसे?
स्पिरिचुअल टीचर से।
अच्छा, सेंटर पे रहते हैं
जी?
अच्छा, कितने साल से ज्ञान में चलते हैं?
20 इयर्स।
20 इयर्स से। और सेंटर पे कितने साल से रहते हैं?
सेंटर में हो जाएगा 8-9 साल, 10 साल करीब।
अच्छा, रूरकेला सेंटर में, सिटी में।
अलग अलग सेंटर में रहे हैं।
अच्छा अच्छा, सुनाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे, थोड़ा सा दूर रखेंगे माइक। हाँ हाँ, ये ठीक है। अभी क्या तकलीफ है आपको?
तकलीफ तो भैया ऐसे, जैसा बाबा कहते हैं जिस प्रकार की हमारी पर्सनैलिटी होना चाहिए
जी,
वो तो जितना होना चाहिए नहीं है, थोड़ा बहुत है। बाकी फेयरनेस है, बहुत फेयरनेस है, जरा सा अगर डर है, और वो डर है भूतों की डर।
अच्छा, तो आपको लगता है कि भूत है?
वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन
बाबा तो रोज मुरली में कहता है कि 5 भूत तो है ही है कम से कम, और वो सर्वव्यापी है। कोई दूसरे भी भूत हैं क्या?
नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन शुरू से बचपन से वो। अच्छा। अगर जरा सा हवा आएगा, मैं अकेली हूँ, जरा अगर दरवाजा भी थोड़ा सा आवाज आया तो मुझे लगता है कोई भूत है या कुछ है।
मतलब हवा नहीं आई, भूत आ गया ऐसे लगता है। पंखा का हवा गया तो लगता है भूत आया,
सन्नाटा होगा, कोई भी आवाज आया,
पंखे का आवाज आता है तो उसमें भी लगता है कि पंखे से भूत आ गया।
पंखे की आवाज से नहीं लगता,
सिर्फ दरवाजे का लगता है। और कोई डर?
वही भूतों की डर है।
तो क्या इसके कारण आपके कामकाज के ऊपर, आपके सेवा के ऊपर असर पड़ता है उसका?
हाँ, अकेली अगर छोड़ दिया जाए तो फिर मैं भले बाबा को याद करती रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहती है।
अच्छा।
दिन में भी अकेली कहाँ सो जाओ, तो अगर बाबा की याद में सो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर डर है अंदर ही अंदर। या बाबा को याद भी करती रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर डर ही भूत है।
अच्छा, आपने देखा है कभी भूत?
ना,
नहीं देखा। तो अगर देखा ही नहीं तो कैसे मान लिया कि है?
बचपन से ही संस्कार है, डर की संस्कार, भक्तों की डर की संस्कार है।
अच्छा अच्छा, और क्या तकलीफ इसके अलावा?
इसके अलावा और भी, अगर जैसे अपने बचपन की जो ये एनवायरमेंट था वो डिपेंडेंट की संस्कार था, हर प्रकार की डिपेंडेंसी, हर प्रकार कुछ भी प्रॉब्लम हो या ना, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, तो उसका तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। कोई भी बातें आती है, अभी तो इतना नहीं मालूम पड़ती है, पहले तो उसका भी जरा बहुत, अगर पूरा ये हो गया, कोई सहयोग नहीं दिया तो उस समय संकल्प चलती है, चलो सहयोग देने वाले कोई नहीं है तो चलो खाना पीना बंद करके भी हम मेडिटेशन में 2 दिन तक भी अकेली बैठ जाते हैं। तो इस टाइप
कोई छोटी मोटी बात हो तो आपको दूसरों का सहयोग हमेशा ही लेना पड़ता
था संस्कार
ऐसा था, पर अभी थोड़ा कम हो गया।
अभी अभ्यास कर लिए, जबरदस्ती अभ्यास कर लिए कि चलना ही है, ऐसे ही
अकेले जा सकते हैं गांव में, इधर उधर ट्रेन में बस में जा सकते हैं?
हाँ, दिन के समय चले जाते, खाली भूत की डर, अगर कि दूसरा की डर को नहीं लगता।
अच्छा, मान लो सेंटर पे कभी आप बैठे हैं और आपको कुछ लगा, कुछ आवाज वावाज आया, लगा कि हाँ भूत आ गया है, तो आपने कभी साथ में कोई बहन या भाई है मान लो उस टाइम, तो आपने उनको पूछा कि आपको भी लगता है क्या भूत है? पूछते हो कि नहीं पूछते हो उनको?
नहीं नहीं पूछते हैं, क्योंकि अपना अपॉइंटमेंट बोल के पूछते हैं।
तो ये तो सिर्फ आपको आभास होता है ना, आपको अंदर से मालूम है कि भूत नहीं है, पर आपको ऐसे लगता है, आभास होता है, आभास होता है ना, आपको है नहीं, सच में नहीं है भूत,
नहीं,
पर ऐसे आभास होता है कि भूत आ गया
शुरू से ऐसा।
लेकिन बाबा तो मुरली में हमेशा कहते हैं कि आप आत्मा को तो आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना
जी।
अगर होगा, मान लो होगा, तो सबको दिखाई देना चाहिए कि है, है ना, ठीक है ना, तो सिर्फ आपको ही लगता है तो इसका मतलब नहीं है, सिर्फ आभास होता है
जी,
है ना। हो सकता है सिविल सोल भी हो, इविल सोल नहीं हो, सिविल सोल हो, कोई फरिश्ता भी हो जी। हो सकता है बाबा ही हिला रहा हो दरवाजे
जी भाई जी,
है ना, तो आप हमेशा ही सोचा करो बाबा ने दरवाजा हिला दिया, है ना
जी,
सोच सकते हैं ना, तो उस बहाने बाबा की याद भी आएगी अच्छी से।
और अंधेरा हो गया भाई जी, लाइट चला गया, तो भले तेल सर जाए सेंटर के, लेकिन मैं दिया रात भर जला देती हूँ, अगर कुछ ऐसे कुछ होगा,
लाइट आ भी गई तो भी दिया चालू रहेगा
अच्छा। लाइट जला, इसमें तेल डाल के,
पर मान लो दिया बंद
हो गया, सो गई, फिर दूसरे बहने को बोलूंगी जो खाने वाला तेल है उसको डाल के दिया जलाओ, लेकिन जलना चाहिए दिया।
अच्छा, और मान लो दिया बंद हो गया तो?
बंद होना नहीं चाहिए,
नहीं हो गया तो?
हो गया तो नहीं, सो गए तो नहीं, देख फिर से चलेगा।
तो अच्छा है ना, सोते रहने का ना? अच्छा, वो भी अच्छा, मतलब वो भी प्रॉब्लम है, तो वो तो अंधेरा होने वाला है, बाबा तो बोलता है विनाश के टाइम इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तो क्या करेंगे उस टाइम?
कभी कभी
तेल भी नहीं मिलेगा, हो सकता है पानी भी नहीं मिलेगा। चलिए, और कोई तकलीफ इसके अलावा?
उसके अलावा है, जैसा सोच लीजिए किसी की व्यक्ति से हमारी विश्वास ज्यादा है, कोई भी हमारी रिलेशन है अपने लौकिक है चाहे वो लौकिक है, और हम डिवोटी मनोवृत्ति भी रखते हैं, फिर नहीं मिलता है तभी भी हमारी संकल्प चलती है। उसके कारण भी मालूम है कि बाबा से हम ले नहीं पा रहे हैं, इसके कारण मालूम है, होते हुए भी संकल्प चलती है।
मतलब बहुत ज्यादा किसी के ऊपर जल्दी विश्वास कर देते हैं आप।
विश्वास भी करते हैं, डिवोशन मनोवृत्ति भी रहती है। मैं चाहती हूँ मैंने 7 दिलों के किसी को देना है, और उससे भी हमको 7 दिलों के उसको मिलना चाहिए, डिमांड है, तो उसका भी संकल्प चलती है।
पर वो भगवान तो है नहीं, वो हमेशा तो आपको देंगे नहीं है? एक सिर्फ बाबा ही वो दे सकता है
जी, लेकिन
तो हमेशा
दिलान होना चाहिए कि खुद भी सच्चा दिल होना चाहिए, दूसरे भी सच्चे दिल, बाप समान हर आत्मा होने चाहिए, खुद भी होना चाहिए दूसरे भी होने चाहिए।
बराबर, हम दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते ना?
नहीं कर सकते,
सिर्फ अपने को ही चेंज कर सकते हैं ना, है ना। तो मान लो आपने किसी को बहुत अच्छा सहयोग दिया और सामने वाला आपको सहयोग नहीं देता है
जी,
तो इतना फील नहीं करना चाहिए?
सहयोग नहीं देने से नहीं, विश्वास की और उसका लगा दे मिलता है,
विश्वास कर दिया
हाँ,
आपके विश्वास के अनुसार उसने सेवा नहीं किया या काम नहीं किया, तो ऐसे तो कलयुग में मिलेंगे ना, सचित्त है नहीं तो कलयुग में तो ऐसे मिलेंगे। या हो सकता है आपको ऊपर से, आपने तो उपकार का काम किया है, सेवा का काम किया है, वो आपके ऊपर अपकार कर दे, है ना, हो सकता है आपके ऊपर गुस्सा भी करे, आपको गाली भी दे, हो सकता है आपको चमाट भी मारे, है ना। तो हमें तो तैयार रहना चाहिए। बाबा तो कहता है मरना पड़े झुकना पड़े, चमाट खाना नहीं, सिर्फ गाली खाना नहीं, मरना भी पड़े
जी,
तो तैयार रहना चाहिए, तो बाबा को मानना चाहिए ना, तो हमें तो तैयार रहना चाहिए हमेशा, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो, है ना, ठीक है ना
जी।
ठीक है, आपने सेवा का काम किया, आपने पुण्य का काम किया, आपने अच्छा काम किया, सामने वाला हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे या नहीं दे, कोई अर्जा नहीं, वो उसका भाग्य है, हमारा भाग्य नहीं। हम अपना पुरुषार्थ करके हम अपना खाता क्यों खराब करें, है ना, सही बात है ना। बराबर, और कोई तकलीफ इसके अलावा?
नहीं, वो ही है, बाकी जो भी है अपना तो जानते हैं कि कमजोरी के कारण होती है तपस्या, जो जितना बाबा से लेना चाहिए
वो नहीं हो पाता। बराबर,
हाँ, कभी कभी अकेले में भी संगठन की शक्ति अलग रहती है, अकेले में करते करते चलो अपना तो इनर पावर बढ़ जाती है, फिर भी जो भी संगठन शक्ति का सहयोग जो है वो नहीं हो पाती है, अलग ही उठो, और बाकी बार 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 ट्राई करते हुए भी जितना अपना मंजिल है उतना तक नहीं पहुंचने के कारण ऑटोमेटिक डिप्रेशन आती है।
ओके, लेकिन कभी कभी आता है ना, रोज थोड़ी आता
है? नहीं, रोज नहीं आती है, इसमें इनर क्वालिटी भी बढ़ती है लेकिन डिप्रेशन भी आती
है। फिर भी संपूर्ण तो बनना ही है ना, बन जाएंगे ना एक दिन, ठीक है ठीक है। बराबर, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है ना, कुछ डायबिटीज ब्लड प्रेशर वगैरह?
ना ना, नहीं।
ठीक है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास की प्रॉब्लम थोड़ा है।
अच्छा, अस्थमा जैसा
जी?
रोज होता है, कभी कभी
ऐसे अगर नहीं, वो तो है, थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं या कुछ
ज्यादा भागा दौड़ी वाला काम करते तो सांस फूल जाता है,
या अगर टेंशन हो गया कभी कभी बाय चांस, अगर ज्यादा प्रेशर हो गया या ज्यादा सीढ़ी उड़ी चल ली है तो ऑटोमेटिक
सांस थोड़ा सा फूल जाता है। कभी धूल मिट्टी वगैरह उड़ता है तो उसके कारण भी होता है सांस फूल जाता है?
धूल मिट्टी नहीं।
बराबर, कहाँ तक पढ़ाई किया लौकिक में आपने?
ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए,
बीए बीकॉम
जी, और अभी जो ये ओडिशा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोलते भाई जी।
अच्छा, कौन से साल में पास किए बीए?
हमारी था संस्कृत एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस था।
कौन से साल में पास किया
ग्रेजुएशन? 94 या 95।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया?
उसके बाद सेंटर में, तो उस समय ही बाबा के घर आ गए थे।
अच्छा,
तो आते जाते भी बाबा के घर में सहयोगी भी बने थे, और ऐसे सेंटिमेंटल नेचर था जिस कारण, और काम करने की भी आदत नहीं था, तो जिस कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता था, शारीरिक प्रॉब्लम भी था इसका, इसका।
पर आपको तो बहुत कुछ सीखना मिला ना, सीखने को मिला ना
बहुत कुछ, पूरा एकदम दुनिया में जो थे, तो दुनिया के अंदर दुनिया क्या है उसका पता भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था अपना
जी।
जो होम का जो जितना एनवायरमेंट था, डोमेस्टिक एनवायरमेंट इसके अंदर थे, बाकी दुनिया के अंदर पता ही नहीं था, तो आके बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट।
बराबर, कितने भाई बहन आप लौकिक में?
लौकिक में हम 9 थे भाई जी।
9
जी,
9 कितने भाई कितने बहन?
2 ब्रदर्स एंड 7 सिस्टर्स थे हम लोग।
7 बहनें और 2 भाई
जी।
आपका नंबर
5?
5वां नंबर, बीच में
जी।
अच्छा, दूसरे सब ज्ञान में चलते हैं, घर में नहीं?
सहयोगी है, बाबा को जानते हैं।
अच्छा,
लेकिन कम्प्लीटली जो बाबा के नियम प्रमाण चलना चाहिए अभी तक भी पूरा नियम प्रमाण नहीं चल, सहयोगी सब है, बाबा को जानते हैं, सहयोगी है सब।
मम्मी पापा हैं अभी?
मम्मी है, पापा नहीं है।
अच्छा, कब गुजर गए?
3 इयर्स।
कैसे गुजर गए?
75 इयर्स हो गया था उनका, भी ऐसा स्वास्थ्य प्रॉब्लम
उम्र हो गई
जी जी।
बार, बार। बराबर, तो आपके साथ में और कोई सेंटर पे समर्पित हुआ है घर में से लौकिक में से?
नहीं, समर्पित नहीं, सहयोगी है, सहयोगी बहुत अच्छी तरह सहयोगी है।
बराबर, हाँ जी, कौन है साथ में? आप एक सेंटर से हैं क्या कि इनके सेंटर से अलग सेंटर से? अच्छा, बराबर बराबर। कोई विशेष और कोई चिंता वाली बात हुई है कुछ दो चार साल में जो आपको बार बार याद आती है?
चिंता वाली बात तो ऐसा नहीं है, लेकिन
कोई विशेष ऐसे
नहीं, नहीं ना, केवल एक चाहते चलो संगठन मिले और उसमें पुरुषार्थ करने से और ज्यादा ये होगा, लेकिन बाबा की इच्छा है अकेली संघर्ष करके आगे बढ़ना है बस।
अच्छा, तो अच्छा है ना कि नहीं? अच्छा
है, अच्छा है,
पर फैमिली तो है, बाबा भी है ना, बाबा का परिवार तो है ही है बेहद का, तो आगे तो आप बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, है ना। बाबा तो कई बार ऐसे भी कहता है कि तूफान आएंगे माएंगे और आएंगे, जबरदस्त आएंगे, कहते हैं ना बाबा तो कई बार मुरली में कहते हैं पहाड़ गिरेंगे दुख के
जी,
अभी तो पत्थर भी नहीं गिरता है दुख का, आराम से यहां बैठे हैं, है ना, तो हमें तो पहाड़ों के लिए तैयार है ना
जी,
विनाश के लिए, है ना, ठीक है ना, सही बात है।
पहले से तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, और जैसे संस्कार था नाजुक की संस्कार, उससे बहुत ज्यादा बाबा ने कॉन्फिडेंस भर दिया,
तो
खुशी भी लगती है कि चलो मैं कुछ कर सकती हूँ। पहले घर की जो संस्कार था
जी,
अपना काम करके भी अपने आप को चलाना की भी संस्कार नहीं था घर में, पूरा अलग टाइप की संस्कार थी। तो अभी बाबा ने बहुत अच्छा संस्कार भरा, कॉन्फिडेंस की संस्कार भर दिया।
इसका मतलब ये हुआ ना कि आप अगर बचपन के साथ में आप अपने आप को तुलना करो तो आप आगे ही बढ़ रहे हैं,
बहुत बहुत आगे बढ़े हैं।
मान लो दो कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम पीछे बढ़ रहे हैं, दो कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम पीछे, पर वैसे तो आप आगे ही बढ़ रहे हैं,
आगे बढ़
तो अच्छा है ना, तो आपको खुश रहना चाहिए, तो डरना नहीं चाहिए उसमें।
नहीं, भूत का तो डर है भैया,
भूत का डर है। बराबर, खाना पीना ठीक खा रहे हैं आप?
हाँ जी।
कितनी रोटी खाते हैं रोज?
रोटी ज्यादा नहीं खाती हूँ, चावल।
चावल ज्यादा? अच्छा, नींद वगैरह सब ठीक है?
नींद भी ठीक है, लेकिन केवल भूत,
केवल भूत, ठीक है, ठीक है, भूतों को भगाना है, बाबा भी कहता है भूतों को भगाना, सही बात है। चलिए,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं सोचती हूँ, अगर लास्ट में जो पेपर बाबा कहते अंतिम समय में इविल्स सोलाएंगे तब मेरी योग लगेगा या नहीं लगेगा, मैं उसका चिंता अभी तक करती
हूँ। इविल्स सोलोगी नहीं, सब ऊपर चली जाएगी लास्ट में। हाँ, देखो मैं बताऊं आपको, 1936 में शिव बाबा जब पृथ्वी पे आए
जी,
तो दुनिया की जनसंख्या 200 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या 30-32 करोड़ थी। इतिहास में आज तक जितनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई इतनी पिछले 70 साल में 75 साल में वृद्धि हुई है। 30 करोड़ से लेकर 115 करोड़ हो गए भारत में, और 200 करोड़ से लेकर 700 करोड़ हो गए। तो जितनी भी इविल सोल थी ना, सबने जन्म ले लिया है, समझ रहे हो? पिछले 75 साल में जितनी भी इविल सोल थी सबने जन्म ले लिया है। आप कहेंगे कि हो सकता है परमधाम से आई हो आत्माएं, परमधाम से आती हो तो कम से कम त्रेतायु होना चाहिए, सुखी होने चाहिए पहले जन्म में। तो मान लो इसमें से आधे भी आए हैं परमधाम से, तो अभी कम से कम त्रेतायुग होना चाहिए, समझा? तो इविल सोल है ही नहीं, भूत है ही नहीं, समझा कि नहीं समझा?
जी भाई जी।
आप ये सोचो, एक मिनट में 170 लोग जन्म लेते हैं, एक मिनट में, आज की तारीख में 170 लोग जन्म लेते हैं और 100 लोग मरते हैं एक मिनट में। ये 70 लोग आते कहां से? परमधाम से नहीं आते, ये सब इविल सोल ने जन्म ले लिया है। अब परमधाम ही खाली हो गया है और इविल सोल भी सारी सबने जन्म ले लिया है, अब हो गया, अब घंटी बजाने का टाइम हो गया है, तो इविल सोल है ही नहीं, सब सिविल सोल है, ठीक है? बस, तो मजे करो आप, ठीक है? चलिए, अभी आप,
थैंक यू,
अभी आप देखो कहां कहां क्या चीज लिखनी है आपको, अभी प्रैक्टिकल में सोचो, शुरू से नाम वगैरह, उम्र वगैरह सब लिखा, एड्रेस, ठीक है, कैटेगरी ऑफ पर्सन, कैटेगरी ऑफ पर्सन में क्या लिखेंगे? ब्रह्मा कुमारी, सन्यासिनी, राजयोगिनी, सन्यासिनी, ब्रह्मा कुमारी, ठीक है, लौकिक में सन्यासिनी कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी कोई समझते नहीं है ना, डेडिकेटेड। फिर प्रेजेंट कंप्लेंट लिखेंगे, ठीक है, भूतों का डर है ना, विश्वासघात का डर, अंधेरे का डर, ठीक है, फिर पर्सनल हिस्ट्री में सारा लिखेंगे, नहीं वो डायग्नोसिस नहीं लिखेंगे, वहां डायग्नोसिस नहीं है, वहां कैटेगरी ऑफ पर्सन है, कौन है, कोई नौकरी करने वाला है, धंधे वाला है, हाउसवाइफ है, गृहिणी है, अच्छा कोई एडिक्शन वाला लिया है या फोबिया वाला लिया है या डिप्रेशन वाला, अच्छा ठीक है, ठीक है, वो तो फिर आप सारी हिस्ट्री लेने के बाद में लास्ट में लिख सकते हैं ना, सारी हिस्ट्री लेने के बाद में ना, तो ये एक्चुअली ये पॉइंट यहां नहीं होना चाहिए, वो लास्ट में होना चाहिए। चलो बीच में आ गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कैटेगरी फोबिया वाला पेशेंट है ना, डर वाला, बहुत ज्यादा डर की बीमारी वाला पेशेंट। प्रेजेंट कंप्लेंट में फिर क्या लिखेंगे, शिकायतें सारी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सी चीज कहां लिखनी है। इस बहन को मैं अलग से काउंसलिंग क्या दे सकता हूं वो भी मैं बाद में बताऊंगा, और भूतों का डर कैसे निकाल सकते हैं वो भी बाद में आपको सार में बताऊंगा, क्योंकि अभी समय कम है। फिर पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे, ग्रेजुएशन किया है ना, 94-95 में, उसके बाद में डेडिकेटेड समर्पण हो गए हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे रहते हैं 18-20 साल से, ठीक है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम चलाते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे 9 भाई बहने हैं, उनका 5वां नंबर है, दूसरे उनके फैमिली में सहयोगी है, कम से कम विरोधी नहीं है, नहीं तो विरोधी है तो खास लिखेंगे कि हाँ विरोधी है, ओपोजिशन करने वाले हैं। कुछ लोग तो सेंटर में समर्पित करने के बाद में भी वापस ले जाते हैं बहन को, है ना, तो वहां और टेंशन होता है। तो ये पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे, ठीक है, बहन जी कमाते तो कुछ नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आएगा, ठीक है ना, जो समर्पित है वो तो चाहे 1 रुपये में चला दे चाहे 1 करोड़ में चलावे, ठीक है। तो लिखेंगे कि आश्रम पे भंडारे के दान के पैसे से इनकी जिंदगी चलती है, इनकी कोई नौकरी तनख्वाह तो है नहीं कोई, हाँ तो वो, हाँ वो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना, कदम में पदम की कमाई यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस मेड, हाँ वो तो हम जानते हैं ना। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में आपने देखा बहन जी बात करते करते खुद बहुत डर भयभीत हो जाती है ना, बात करते करते उनके चेहरे से भी मालूम पड़ता है, उनकी आंखों में 1-2 मोती भी आ गए थे, मैंने देखे थे थोड़े बहुत, है ना, बात करते करते। खैर फिर लिखेंगे हाँ डर वाला जीवन है, नींद बराबर आती है वगैरह वगैरह, ऑब्जर्वेशन जो आपने किया है ना। हाँ बाकी ऐसा है कि उनको कोई दूसरी बड़ी तकलीफ नहीं है, कोई आत्महत्या करने की या दूसरों को मारने की या मरने की, खुद मरने की ऐसी बात नहीं करती है, तो वो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। और उनको बहन जी को खुद को महसूसता है कि हाँ मुझे ये डर की बीमारी है, मतलब उनको अवेयरनेस है, इनसाइट है कि बीमारी है। फिर प्रॉब्लम की लिस्ट में क्या लिखेंगे, खास करके प्रॉब्लम में 2 ही प्रॉब्लम है, 1 भूतों का डर फोबिया और दूसरा अंधियारे का, डार्कनेस का, अंधियारे का बहुत ज्यादा डर, डर नहीं बहुत ज्यादा अति डर, उसको डर की बीमारी कहते हैं। तो काउंसलिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, अब वो मेडिटेशन कराने वाली है, आप मेडिटेशन कहां कराएंगे उनको, माता जी कह रही है कि मेडिटेशन कराएंगे उनको, बताओ हैं? तो काउंसलिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, पहली तो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिस तरह से मैंने उनके विचारों को परिवर्तन करने की बात करी, ठीक है, मैंने तो बोल दिया एक भी नहीं है इविल सोल, और वैसे देखो तो सब इविल सोल है इस दुनिया में, क्योंकि सबके अंदर 5 भूत है, सब इविल सोल है, 1 के अलावा सब है, समझ गए, हाँ। तो फिर डर तो सबका होना चाहिए, आपके आगे बहनें बैठी हैं भाई बैठी हैं, सबका आपको डर होना चाहिए, उनका क्यों डर नहीं लगता, वो भी सब इविल सोल है ना, तो आपको डर रखना ही नहीं, अगर आप डर में ही जीवन बिताएंगे तो मजा क्या आएगा फिर, इसलिए मजे करो, कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए कहते हैं ना बाबा, हाँ। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और भी टेक्निक आती है फिर वो, अभी आप उसके ऊपर सोच सकते हैं, एक सेशन में एक सिटिंग में आप पूरा क्योर किसी को शफा दे दे ये नहीं हो सकता है, हो सकता है आप बाद में ट्रीटमेंट सजेस्टेड जो 13वां नंबर का पॉइंट है उसमें लिखेंगे कि हम दूसरे सिटिंग के लिए दूसरे सेशन के लिए उनको बुलाएंगे, दोबारा काउंसलिंग देने के लिए उनको बुलाएंगे, है ना, या आपको ऐसे लगता है कि इनको बहुत ज्यादा डर की बीमारी है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पेड़ का पत्ता भी रात को हिलता है तो उनको तो भूत ही लगेगा, तो नींद इसका मतलब रोज ही नहीं आती होगी इनको, ऐसे लगता है आपको मान लो, तो आपको लिखना चाहिए मनोचिकित्सक की एक बार राय ले लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट सजेस्टेड में आपने क्या क्या इलाज उनको सूचित किया है, राय दिया है, तो उसमें लिखेंगे इनको एक बार मनोचिकित्सक से भी राय लेनी चाहिए या अपने फैमिली डॉक्टर से भी राय लेनी चाहिए। कई बार कुछ शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियां होने के कारण भी डर की बीमारी बढ़ जाती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, ब्रेन में ट्यूमर वगैरह, उसके कारण भी होता है, पर ऐसा वहमशक अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, कम से कम अपने फैमिली डॉक्टर से एक बार राय ले ले। हाँ जी जी, हाँ जी जी, पर यहां तो सारे बिके हैं, हाँ हमारे पास कई नॉन वी के आते हैं। देखो अंधियारे का डर और भूतों का डर तो नॉन बीके को भी लगता है। मान लो ये बहन जी बीके नहीं है, मान लो आप, तो उनकी हिस्ट्री थोड़ी अलग हो जाती है ना, ज्ञान में नहीं चलते हैं, मान लो घर में रहते हैं वगैरह वगैरह, है ना, समझ गए ना, तो हिस्ट्री थोड़ी बदल जाती, बस इतना ही है। बाकी बीमारी तो नॉन बीके में भी ऐसी मिलती है, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं आपको दूसरे नॉन बीके को लाके इनको आपको डेमोंस्ट्रेशन दूं। ये सैंपल जो है इसके लिए फिर आपके करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा, करिकुलम में लिखना पड़ेगा कि नॉन बीके ही क्लाइंट आना चाहिए यहां, है? तो हम किसी गांव से आसपास से आबू रोड में किसी को उठा के ले आएंगे यहां, है। चलिए फिर देखिए माता जी, देखो माता जी को देखो, अच्छा विचार आया, देखो काउंसलिंग में, हाँ ये और तरीके हैं। माता जी क्या कह रही हैं कि हो सकता है कि बहन जी को एक बार बच्चे के ऊपर मास्क पहना के भूत का अचानक उनके सामने लाया जाए, है ना, एंट्री कराई जाए एकदम रूम में, आ गया भूत, जिस टाइम ऐसे आवाज हो ना उसी टाइम सेंटर पे किसी को ड्रेस पहना के, तो एक बार तो डर जाएंगे बहन जी, पर हमेशा के लिए वो डर निकल जाएगा, जिंदगी भर वो मास्क खोल देंगे, ये तो सेंटर का बच्चा है ये तो, है ना। ठीक है, माता जी ने अच्छा सजेशन दिया। हाँ, और हमारा मकसद है पेशेंट को ठीक करना, डर को भगाना किसी भी तरीके से। ये जो आपने तरीका सजेस्ट किया ये इम्प्लोशन कहते हैं, ये जो बिहेवियर थेरेपी में आता है इम्प्लोशन या फ्लडिंग। इम्प्लोशन अर्थात काल्पनिक भूत का डर दिखाना या भूत का चित्र दिखाना। आप कल्पना करो कि आप बाजार में जा रहे हैं और पांच भूत आपको आ गए पकड़ लिया, ऐसे कल्पना करो, ये इम्प्लोशन है जो आपकी किताब में लिखा है। और वास्तव में आपने ऐसा किसी बच्चे को मोहरा पहना के भूत का फिर उनके सामने माता जी के सामने प्रकट कर दिया और डरा दिया, तो ये है इम्प्लोशन। ये रियल ऑब्जेक्ट को आप लेके आए, जैसे सांप का खिलौना, मैं सुबह भी कह रहा था, सांप हम डाल देते हैं गोदी में, सांप का डर निकल जाता है, पहले तो डर जाएगा व्यक्ति, पर है खिलौने का सांप, लगता असली है, अरे मेरे सांप आ गया, है ना, पर पूरी जिंदगी के लिए सांप का डर निकल जाता है। क्या सांप क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, खेल रहा है आपकी गोदी में, है ना। बाबा योग में बैठे थे, सांप कभी एक इनके कंधे पे भी चढ़ गया था, मधुबन में, याद है आपको, ब्रिज कोठी में थे। खैर, तो ये अलग अलग तरीके काउंसलिंग के। तो फिर आप रिजल्ट में लिखेंगे, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट सजेस्टेड में ये भी लिख सकते हैं कि ये मास्क पहना के मोहरा पहना के डर को निकाला जाए, ठीक है। फिर रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि बहन जी से नहीं, क्योर कहां हुई, अभी क्योर हो गई, थोड़ा बहुत तो डर चला गया ना, हाँ थोड़ा बहुत निकला है, अभी पूरा नहीं निकला है, तो हम दोबारा इनको बुला सकते हैं रिजल्ट में, है ना। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई और भी बड़ी साथ में कोई बीमारी हो, है ना, जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। खैर, रिजल्ट ऑब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि इतना फर्क लग रहा है। हो सकता है आपकी काउंसलिंग अच्छी नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो आप लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा का वैसा डर बना रहा, जो भी है ऑनेस्टली लिखेंगे। पेशेंट आया है, व्यक्ति आया है, उसने उसको आपने परामर्श दिया, उसकी तकलीफ कितनी दूर हुई, नहीं हुई या थोड़ी सी दूर हुई, जो कुछ है ऑनेस्टली लिखेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में सार लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे कि ये व्यक्ति आया, हमने इतने मिनट का काउंसलिंग दिया, कम से कम उसके साथ हमारा संबंध स्थापित हो गया। कई बार तो संबंध ही स्थापित नहीं होता है ना, कुछ तो ऐसी बीमारी वाले आते हैं जो आपके साथ में उनका संबंध ही स्थापित नहीं होगा, रिलेशन ही डेवलप नहीं होगा, समझे ना। तो वो फिर आप लिखेंगे, कम से कम बहन जी के साथ में रिलेशन डेवलप हो गया, हमें मालूम पड़ गया, हम रूरकेला में कभी भूल से भटक गए तो हमें मालूम पड़ेगा, हाँ रूरकेला वाली बहन जी, हमारा रिलेशन तो डेवलप हो गया अभी, है ना, तो संबंध स्थापित हुआ। रिजल्ट में लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे, थोड़ा सा डर निकल भी गया, है ना, और हो सकता है इनको दोबारा काउंसलिंग की आवश्यकता है क्योंकि इनका पूरा डर गया नहीं है, तो ये आप कंक्लूजन में लिखेंगे। तो ये आपको एक मोटा मोटा एकदम प्रोफेशनल मैंने डेमोंस्ट्रेशन नहीं दिया है, पर ये आपको हम किस तरह से काउंसलिंग करते हैं उसका डेमोंस्ट्रेशन दिया। अभी आपको प्रश्न हो तो आप पूछो, 10-15 मिनट खुला सेशन है, ठीक है, क्योंकि फिर आप सब दोबारा नहीं मिलेंगे ना,
10 तारीख को आपका दूसरा सेशन है,
पर इसके साथ इनके साथ ही दूसरों के साथ है ना, वो तो डिप्लोमा वालों के साथ है, हाँ तो आपका सेशन तो आज पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप पूछो मुझे दिल खोल के 10-15 मिनट में, जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, है ना। हाँ जी,
सेकेंड
हाँ हाँ ध्यान से सुनिए, बहन जी कुछ बोल रहे हैं, या माइक इस्तेमाल करो, माइक दो ताकि मुझे रिपीट नहीं करना पड़े। एक सेकंड आप माइक में बोलिए ना, तो है ना, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको वाइवा में एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर।
ओम शांति। प्रकाश कुंज में सेकंड में थी शाम, सेंटर में रूम में 6 मेंबर्स का कमरा, कोई भी नहीं था, मैं अकेले कुछ पढ़ के बैठी थी। मेरे को कितना भय हो गया, पीछे से कोई आ रहा होगा, ऐसा भयभीत हो गई। ये तो हमेशा ऐसा ही होते, ये अकेले रहती तो घर में ऐसा भय होता है। ये तो भूतों का कोई मालूम नहीं, एक्चुअली करेक्ट से बताना तो मालूम नहीं, मगर भय होता है,
कभी कभी होता है ना, रोज थोड़ी होता है। ठीक है,
माया
कभी
कभी आती है,
कोई अर्ज नहीं, निश्चिंत
रहना। सो रही थी, सडन एक ड्रीम आ गया, ड्रीम में एक एक्सीडेंट, एक्सीडेंट आंखों में देख के।
मैं आपकी अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं काउंसलिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहा हूँ।
बहुत भय हो गया।
आप अगर मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आपका वेलकम है ग्लोबल हॉस्पिटल में, पर अभी ये काउंसलिंग के बारे में, इस कोर्स के बारे में, इस लॉग बुक के बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो।
ये भूतों का कनेक्शन कनेक्टेड क्वेश्चन, इसलिए बता रहे
हैं, बाद में पूछते हैं। ठीक है, अच्छा सुनिए सुनिए, हाँ भाई साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हाँ जी, हाँ अच्छा प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपके शहर में, आपके गांव में शराब पीने वाले भी काउंसलिंग लेने के लिए आ सकते हैं, शराब छोड़ने के लिए। भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या आप उनके घर में रोज जाएंगे काउंसलिंग देने के लिए,
उनको बुलाएंगे
या उनको बुलाएंगे सेंटर पे, या अपने घर में बुलाएंगे, क्या करेंगे? जो भी सहूलियत हो, चाहे वो आना चाहे आपके घर पे या सेंटर पे, तो वो आ सकते हैं, लेकिन शराब पी के नहीं आएंगे। अगर वो कहते हैं कि आप हमारे घर में आओ, मोस्ट वेलकम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, नजदीक में है आपके घर से उनका घर, तो आप उनके घर में जाके भी काउंसलिंग का सेशन दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग अकेले में देंगे, ऐसे नहीं कि चार लोग दूसरे बैठे होंगे।
लेकिन ब्रह्मा कुमारी कैसे जाएगी?
ब्रह्मा कुमारी समर्पित बहन नहीं जाएगी, इसलिए वो सेंटर पे बुलाएगी। ठीक है, अगर आप सेंटर पे समर्पित नहीं है तो आप जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहने नहीं जाएगी, तो आप सेंटर पे बुलाएंगे उनको। ठीक है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी बात करने के बाद में, दो चार रिश्तेदारों के साथ में बात करके, हिस्ट्री लेकर के, फिर काउंसलिंग आप अकेले में देंगे। जैसे मैं बहन जी के साथ अकेले में बात कर रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप सब बैठे हैं। ठीक है, इस तरह से आप अकेले में काउंसलिंग देंगे, ऐसे नहीं कि उसके साथ में चार लोग बैठे हैं, उनको भी सारी उनकी क्या कहते हैं किताब खोल के वो उनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ठीक है, पास्ट की, हाँ पास्ट की बीमारी के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं। माइक दो माता जी को, माइक दो।
एक पुराना स्टूडेंट था, बहुत ही बदमाश, और बड़ा होकर के उसने एक रेस्टोरेंट खोला, काफी चलता है उसका, लेकिन वो बहुत बड़ा शराबी, इंटेलिजेंट भी बहुत था, लेकिन
पहले ज्ञान में चलता था, पहले ज्ञान
शराब पीने लगा,
पहले ज्ञान में चलता था,
ज्ञान में नहीं था,
नहीं था, अच्छा,
लेकिन ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट बट वेरी नोटोरियस।
देखिए, शराब के पेशेंट जो होते हैं ना, उसके बारे में आप तीन चार बात ध्यान रखेंगे। पहली बात तो यह है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है, रोज पीता है, या मान लो दिन में दो तीन बार पीता है, तो ऐसे शराब के एडिक्शन वाले मरीज को तो हम भर्ती करते हैं, क्योंकि शराब छोड़ने के बाद में बहुत तकलीफ होती है, नींद नहीं आती है, हाथ में कंपन होता है, भूख लगती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो शराब छोड़ने के बाद में ऐसे पेशेंट को काउंसलिंग सिर्फ काम नहीं करता है, उनको दवाई भी देना पड़ता है, तो हमारे जैसे मनोचिकित्सक के पास भेज देना है। दूसरी बात, अगर कम शराब पीते हैं, मान लो कोई व्यक्ति हफ्ते में दो चार बार पीता है, या महीने में 10-15 दिन पीता है कभी कभी, अगर वो व्यक्ति काउंसलिंग लेना चाहता है तो वो उसको आप काउंसलिंग दे सकते हैं, उसके घर पे जाके या उसको सेंटर पे बुला के। वो व्यक्ति समझाने से शराब से क्या क्या नुकसान होता है, जैसे आपकी हेल्थ एग्जीबिशन की चार्ट बना है, व्यसन मुक्ति का जो एग्जीबिशन बना है प्रदर्शनी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसका आप सहयोग लेकर के उसको सिखा सकते हो, समझा सकते हो कि देखो शराब से इतनी इतनी बीमारियां होती है, शराब से मस्तिष्क पे नुकसान होता है, लीवर बिगड़ जाता है, पेट में गड़बड़ होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारा याददाश्त गड़बड़ हो जाती है। तो वो समझा करके, ज्ञान दे करके, और शराब छोड़ने के बाद में कितने फायदे हैं, पैसे बच जाएंगे, वो पैसे आप बच्चों के काम में लगा सकते हो, फैमिली में लगा सकते हो, ऐसी काउंसलिंग देकर के शराब छुड़वा सकते हो ऐसे शराबी को, कि जो रोज नहीं पीता है, कभी कभी पीता है या हफ्ते में एक दो बार या चार बार पीता है, पर जो रोज पीने वाला है वो गंभीर बीमारी है एक किस्म की, उसको मानसिक बीमारी भी हो सकती है। जैसे आप ये कह रहे हो कि रेस्टोरेंट चलाता है और रोज पीता है शराब, शराब पी के गुस्सा भी करता होगा, घर में मारता भी होगा, गाली गलौज भी करता होगा, झगड़े भी करता होगा, गाड़ी चलाता होगा ऐसे फास्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर चला रहा हो, है ना। तो ये बीमारी है, एक किस्म की गंभीर मानसिक बीमारी है। ऐसे व्यक्ति को आपको राय देनी चाहिए कि आप मनोचिकित्सक के पास जाओ, 10 दिन हफ्ता रुक के आओ वहां रह के शराब छोड़ के, फिर उसके बाद में हमारे पास आना, हम आपको काउंसलिंग देंगे सेंटर पे। आप ऐसे मरीज को, गंभीर शराब की एडिक्शन वाले पेशेंट को आप काउंसलिंग का सेशन शुरू नहीं कर सकते, उसमें नुकसान हो सकता है, कहीं आपके ऊपर ही गड़बड़ हो जाए, समझा। हाँ जी, और कोई प्रश्न? अभी मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूं नहीं, और अगर होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कोई देता है, कल जाकर के कुछ रिएक्शन हो गया, कल जाकर के कुछ गड़बड़ हो गया, उसका जिम्मेवार कौन है? आप डॉक्टर हैं नहीं, आपके सेंटर में अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो ठीक है, उससे आप दिलवा सकते हो, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ काउंसलिंग का, आप काउंसलिंग के स्टूडेंट है ना, आपको एमएससी की एग्जाम पास करनी है ना, तो आपको होम्योपैथी गोली के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ काउंसलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है जी। और आप कहां रहते हैं? नासिक में। नासिक में मेरे जैसे डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं, आप यहां तक तो भेज नहीं सकते हैं, नासिक के मरीज को आप माउंट आबू नहीं भेज सकते हैं, है ना, तो आप वहीं रेफर कर दो उनको, या अगर आपको लगता है कि वो यहां आने के लिए तैयार है माउंट आबू में, यहां माहौल भी अच्छा है, बाबा का मधुबन है, तो आप फोन करके भेज सकते हैं मुझे, है ना, ग्लोबल हॉस्पिटल में फोन करके तारीख लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के फिर भेज सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न काउंसलिंग से संबंधित? बस सब संतुष्ट।
मैंने जो आपसे सजेशन के तौर पे पूछा था, आप एक प्रोफेशनल सैंपल काउंसलिंग का हमारे बीच शेयर कर लें, जो किसी भी एक मॉडल के बारे में
किया ना, अभी बहन जी के साथ किया
नहीं, ये तो अपने जैसे जो आप कर चुके हैं अपने क्लिनिक में, अगर किसी के साथ किया उसमें क्या आपने काउंसलिंग दिया उनको और उससे क्या चेंज आया, ऐसा कुछ
हमारे पास तो रोज आते हैं, हम तो रोज मरीज को ठीक करते हैं,
कर लेंगे तो एनलाइटन होंगे।
अच्छा, एक नहीं बहुत दे सकते हैं, उसमें क्या है, चलिए एक सैंपल दे देते हैं, ठीक है। आपको कौन से पेशेंट का सैंपल चाहिए, कौन सी बीमारी वाला? हाँ जी,
स्ट्रेंड फैमिली रिलेशंस,
स्ट्रेंड फैमिली रिलेशनशिप, मैरिटल थेरेपी, मैरिटल काउंसलिंग, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े चलते हैं, है ना, ऐसे मरीज चाहिए आपको, ऐसा काउंसलिंग किस तरह से हम देते हैं, क्या करते हैं, अच्छी बात है। हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, है ना, बीके हैं, नॉन बीके हैं, सेमी बीके हैं, क्योंकि जब सेमी बीके होते हैं ना तो उसमें ज्यादा गड़बड़ होती है, एक सहयोगी है एक सहयोगी नहीं है, है ना, तो उसमें उसके कारण घर में गड़बड़ होती है, रोज गड़बड़ होती है। जो मुख्य बात है, जब हमारे पास कोई एक हस्बैंड आता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, जो ज्ञान में चलता है वाइफ नहीं चलती है, या वाइफ ज्ञान में चलती है हमारे पास आती है पर उसका हस्बैंड ज्ञान में नहीं चलता है, ऐसे बहुत आते हैं पेशेंट। पहले तो ये देखते हैं कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है दो में से किसी को भी, मान लो वाइफ आई है ज्ञान में चलती है पक्की है धारणा में, और उसका हस्बैंड सहयोगी नहीं है। अभी एक आके गया मेरे पास, एक अहमदाबाद से पेशेंट आके गया, मैं प्रैक्टिकल में आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है कि हमारी बहनें टीचर होती है ना, हर एक टीचर ऐसी होती है, ये चाहती है कि हमारा स्टूडेंट नंबर वन बने और पहले ही दिन सीधा नंबर वन में पास हो जाए, तो एक सप्ताह में इतना कोर्स का फोर्स भरते हैं और वो फोर्स स्टूडेंट में इतना जबरदस्त भर जाता है ना, तो बहन ज्ञान में चलना शुरू कर देती है, चलती नहीं है दौड़ना शुरू कर देती है, और घर में पानी भी नहीं पीती है, दूसरों का ग्लास भी यूज नहीं करती है, अपना अलग बर्तन लेना शुरू कर देती है, अपने रसोई के बर्तन अलग शुरू कर देती है, अलग सोना शुरू कर देती है, बच्चे का भी ध्यान नहीं रखती है। अगर कोई बाहर खाना खा के आया है, कोई शादी पार्टी में खा के आया है, तो बोलती भी नहीं उसे, तुम तो पतित हो गए हो, ऐसा कहती है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, बाबा कहते हैं हमेशा युक्तियुक्त चलना है। लेकिन ज्ञान का फोर्स इतना भर जाता है कि बहन जी तो एकदम ज्ञान में उड़ती है और हस्बैंड जो है वो देखता रहता है कि क्या हो गया अचानक। अब जैसे मंजू भाई ने बोल दिया बाबा जादू करता है, बाबा ने किया या बहन जी ने किया, टीचर बहन ने किया, किसने किया मालूम नहीं हमें, है ना। पर इसके कारण फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बहन जी तो फिर क्या हुआ, जो मैं जो पेशेंट अभी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, इसका पियर था पुणे में, प्रॉब्लम इतना बढ़ना शुरू हो गया कि वो बच्चे का भी ध्यान नहीं रखती थी। ज्ञान योग की बात, सेंटर पे जाना, सुबह शाम जाना, घर में खाना खुद का बनाना, आपका तो मैं बनाऊंगी नहीं, आप तो पतित है, आपके बर्तन पतित है, लहसुन प्याज को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं तो, आप अपना अलग कर लो किचन, नहीं तो मैं तो पियर चली जाती हूं। वो पियर चली गई, पियर जाने के बाद में 6 महीना हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हस्बैंड, बच्चे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे मिस करते हैं, मां को तो मिस करते हैं, है ना, दो बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उसके मां बाप को समझ में आया कि ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। दूसरी तरफ बहन जी से बात किया, सेंटर की बहन जी से, कि आपने क्या ऐसा ऐसा सिखाया क्या कि आप घर छोड़ दो, पियर चले जाओ, बर्तन को हाथ भी नहीं लगाओ। कहते नहीं नहीं हम तो ऐसा सिखाते नहीं है ना। खैर जो भी है, तो वो मां बाप उसके, बहन जी अच्छी थी, थोड़ी सेंसिबल थी, जो टीचर बहन जी अहमदाबाद की थी, मैं नाम नहीं लेता हूं, वो अच्छी पढ़ी लिखी समझदार थी, उसको भी समझ में आया कि ये कुछ मानसिक बीमारी लग रही है। नहीं तो दूसरी भी बहनें आती हैं, सब ज्ञान में चलते हैं, युक्तियुक्त चलते हैं और दूसरों को भी युक्तियुक्त ज्ञान में लाते हैं, इस बहन जी को कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो उसके साथ उसने अच्छी फ्रेंडशिप बनाई थी स्टूडेंट के साथ में, उसने समझा करके वापस बोला कि तुम ऐसे करो, वहां मनोचिकित्सक को दिखाओ पुणे में। लेकिन वो तैयार नहीं थी वहां दिखाने के लिए, नहीं मैं तो किसी भी पतित के पास नहीं जाऊंगी, मौनबिके के पास नहीं जाऊंगी। अच्छा, उसने युक्ति करके, रच करके मधुबन आने का प्रोग्राम बनाया, फोन करके बड़ा पुरुषार्थ करके समझा के उसको उसके मम्मी पापा के साथ में मधुबन में बुलाया, मेरे पास ग्लोबल हॉस्पिटल में, हमारे से बात करी। बात करते करते मालूम पड़ा कि उसको तो एक किस्म की ऑब्सेशन की बीमारी है, विचार वायु की बीमारी। एक बार साफ कर दिया बर्तन, फिर भी लगेगा अभी भी गंदा है, अभी भी गंदा है, 4 बार साफ करेगी, 5 बार साफ करेगी, है ना, 10 बार करेगी, पर वो रोक नहीं सकती है उसको। एक मन कहता है कि तुम फिजूल में कर रही हो यह, पर दूसरा मन कहता है नहीं नहीं करो करो, अभी भी गंदा, अभी भी गंदा। तो आपस में युद्ध होता है। ये ऑब्सेशन क्या होता है, विचार वायु की बीमारी क्या होती है, उसमें युद्ध चलता है आपस में, फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसको ऑब्सेशन हो गए थे, उसके कारण से वो छूती तक भी नहीं थी, उनके बर्तनों को छूती तक भी नहीं थी, भले साफ हो, फिर भी बच्चा पानी मांग रहा है, प्यासा है, स्कूल से आया है, ग्लास भी नहीं देती थी कि गंदा है ग्लास। खैर उसको दवाई चालू कर दिया, वो बिल्कुल ठीक 2-3 हफ्ते में हो गई, बिल्कुल ठीक। उसके बाद में उसके मम्मी पापा पुणे से आए, वापस दिखाने के लिए आए 3-4 हफ्ते के बाद में अहमदाबाद से, फिर समझा करके उसको, वो जब ठीक हो गई तो समझ में आ गया कि हाँ गलती तो मेरी है, गलती मेरी है मतलब मेरी बीमारी की है, उसकी भी गलती नहीं है, ये बीमारी ही ऐसी होती है। पर हमने फिर काउंसलिंग भी दिया, दवाई भी दिया, उसको समझाया कि विचारों को किस तरह से परिवर्तन करना है, वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसका हस्बैंड भी आया, अभी दिखा के गया, अभी 10 दिन पहले ही, 15 दिन पहले, पिछले 6 महीने से 8 महीने से वो अहमदाबाद में वापस ससुराल में आ गई है, धारणा में दोनों चल रहे हैं। और उसका हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत समझदार है, बहुत कोऑपरेटिव है, और अभी दोनों ज्ञान में अच्छी तरह से चल रहे हैं। उसने भी कोर्स किया, उसके कारण कहते मैं भी तो सुनूं कि ये ज्ञान कैसा है। कहते इतनी सारी बहनें अच्छी है, इतना अच्छा ज्ञान है, यहां तो कुछ ऐसा गड़बड़ लग नहीं रहा है। उसका भाई एक न्यूयॉर्क में रहता था, उसने भी वेबसाइट पे देखा, इंटरनेट पे ब्रह्मा कुमारी क्या है, क्योंकि उसको भी मालूम पड़ा कि ब्रह्मा कुमारी जाने के बाद में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके बाद में देखा पढ़ा, तो उसने कोर्स किया। फिर मेरे पास जब आए, 2-4 बातें मुख्य मुख्य डिफरेंसेस होते हैं जब भी ज्ञान में कोई युगल आता है, 2 में से 1 आता है, 1 नहीं आता है। एक खाने पीने की, उसमें गड़बड़ होता है ना, एक ब्रह्मचर्य की पालना, पवित्रता की पालना में, और तीसरा बाहर जाने में, शादियों में, पार्टियों में, व्यवहार में, जो लौकिक परिवार में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। मान लो दोनों अलग हो जाते तो उसका हल नहीं था। सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है कि ये ठीक हो जाए, ये बहन ठीक हो गई, धारणा में चलना चाहती है, अच्छी तरह से चलती है, भाई को भी समझाया, देखो मनोविज्ञान में तो ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति समझ पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जैसे सिगमंड फ्रॉयड ने, आज मैं सुबह बता रहा था, सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि कोई व्यक्ति काम विकार से दूर रहता है और सारे रिश्ते भगवान से जोड़ लेता है तो बहुत ऊंची जीवन शैली है। वो समझते हैं कि ये तो पागल हो गई है, एबनॉर्मल हो गई है। पहले शुरू में ऐसे वो सोचते थे, पर मैंने समझाया, उनको समझाया कि ये देखो, ये किताबों में भी लिखा है, ये मेडिकल की किताबों, एक तरफ मेडिकल की किताबों में ये भी लिखा है कि भूख, प्यास, काम, नींद, ये सब आवश्यक है। दूसरी तरफ ये भी है। अभी आपको सोचना है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप दोनों को सोचना है। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, आप काउंसलिंग देंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं नहीं आपको धारणा में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको धर्मराज के डंडे पड़ेंगे, मतलब ऐसे डराना नहीं है, ठीक है। कुछ डराते भी हैं, आपका पद ऊंचा नीचा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो पहले दिन से ही भाग जाएगा, ये तो देखो पहले से ही डंडे के मलवा रहे हैं ना। खैर, तो काउंसलिंग में आप पेशेंट के ऊपर छोड़ देंगे, उसको क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है, वो अपने आप समझेगा, ठीक है। अभी दोनों की गाड़ी इतनी बढ़िया चल रही है, दोनों साथ में आते हैं मिलने के लिए, इनका धंधा भी और अच्छा बढ़ गया, बच्चे भी खुश है, और हर महीने दो महीने में आते हैं और 15 दिन में 20 दिन में एक बार रिंग भी करते हैं, फोन भी करते हैं। तो ये एक सैंपल आपको मैंने बताया, ठीक है, ओके, ओम शांति।
वो आपको फोन पे थैंक्स देते होंगे और हम यहां तालियों द्वारा थैंक्स सब देंगे। बहुत अच्छा सेशन रहा और आई होप एवरीबडी हैज एंजॉयड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निखिल पटेल जी का। अब एक मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद सावित्री बहन हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो उनको भी वेलकम करेंगे और उनके सेशन के लिए हम सब प्रिपेयर होंगे। ओम शांति।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में। शांति की शक्ति से।